बीमारी के धोखे क्या हो सकते हैं। तो कल हमने पेशेंट को एडमिट कर दिया और पेशेंट ने एडमिट कर दिया कि मैं बीमार हूं। तो आज ओपन हार्ट सर्जरी, ऑपरेशन, ऑपरेशन थंडर। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी है, इसमें एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनेस्थेसिया को क्या बोलते हैं? भूल देना। भूल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी भूल गए भगवान को। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनिए, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप न करना पे चर्चा करें। अंतिम भाग है इसका, लास्ट एंड फाइनल। तो आज हम चर्चा करेंगे क्यों हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। तो सारे आचार्य, सारे शास्त्र गुरु एक ही कारण बताते, उसका लैक ऑफ सिंसेरिटी। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सिंसेरिटी, क्योंकि हम सिंसियर नहीं। हरे कृष्णा में है सिंसियर्स बट नॉट सिंसियर, कई सालों से है। सिंसियर का मतलब क्या है? कई सालों से है सिंसियर बट नॉट सिंसियर। तो सिंसियर का दूसरा मतलब क्या है? वन हु हैज सीन थ्रू इयर्स, सिंस इयर्स, जो कानों से सुनता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। उपदेश अमृत क्या कहता है? फर्स्ट क्लास मैन इज हु वन हु हियर्स एंड रिफॉर्म्स। तो हमें सिंसियर नहीं होना है, सिंसियर हमें है कई सालों से है, लेकिन सीन थ्रू इयर्स वो है सिंसियर। हाँ, सिंसियर पाप, पाप भी देखते, वो भी है। सीन का मतलब देखना और दूसरा सीन है पाप। सिंस इयर्स, तो जो देख रहा है आंखों से नहीं, कानों से सुनकर क्या हो रहा है? रिफॉर्म, बदलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें बनना है। तो तीव्र इच्छा या प्रामाणिकता का अभाव, उसके कहते हैं लैक ऑफ सिंसियरिटी। तो इसलिए एक बहुत ही सुंदर भजन आता है वैष्णव भजन में, केन हरे कृष्ण नाम हरि बोले। उसमें वो कवि कहते हैं केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले, मन प्राण कांदिना पखी ना जाने को न अपराधे, केनो हरे कृष्ण नाम बोलना। तो कहते हैं मालूम नहीं कि कौन से अपराध के कारण हम भगवान का नाम तीव्रता से नहीं ले रहे, लेकिन यहां शास्त्र बता रहे कि सबसे बड़ा अपराध क्या है, कि ध्यान पूर्वक जप न करना, गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पे कि निस्साय अवस्था में एक निरागस बालक के समान, जैसा बच्चा पुकारता है मां को, उस भावना से हम क्यों नहीं पुकार पाते। जैसे पहले दिन हमने बताया कि हम भगवान को प्रामाणिकता से पुकार नहीं रहे, तीव्र इच्छा से पुकार नहीं रहे। ऐसे हमने उदाहरण दिया कि जो बालक था पहले दिन जब गिरा ऊपर से तो रोने लगा और मां को पुकारने लगा, और अपने पूरी निस्साय अवस्था में वो रोने लगा। और जो भी मां है पूरी तरह जानती है कि जब आवाज बदलती है उसके रोने की, तो तुरंत पहचान जाती है कि बहुत ही धोखे में है बड़ा लाडला, तो तुरंत भाग के आती है। उस प्रकार वो भाग के वहां पर चली गई और उसने उठाया उसको और रसोई घर में फिर से वापस गई, और रसोई घर में जो लड्डू का डब्बा था और लड्डू का डब्बा खोला और एक लड्डू उसके हाथ में दिया और एक मुंह में डाला, तो उसका रोना बंद हो गया। फिर अगले दिन वापस उसी समय वापस रोने की आवाज शुरू हो गई, लेकिन मां ने पहचान लिया कि वो आवाज नहीं है जो कल थी। तो बहुत ही रोने लगा, बहुत ही रोने लगा, और खुद जाकर मां की साड़ी का पल्लू पकड़कर कहने लगा कि आज तुम क्यों नहीं आई, कल तो आई थी, आज क्यों नहीं आई, आज भी मैं रो रहा था। तो कह रही कल तुम सचमुच रो रहा था, आज तुम लड्डू के लिए रो रहा था। उस प्रकार हम भी रो रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन जो इंद्रिय भोग का लड्डू है उसके लिए रो रहे हैं। तो इसलिए भगवान हमारी सुन नहीं रहे, कह रहे भगवान को मेरी आवाज सुनो, लेकिन भगवान सुन नहीं रहे। तो हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी विपदा हूं, कठिनाई में हूं, ये जन्म मृत्यु का प्रश्न है। ये समझकर हमें क्या करना है, अंतकरण से, हृदय से, अपने नाभि से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब तक हृदय से जब तक पुकारते नहीं, रोना नहीं आता, हाँ, तब तक भगवान वो सुनेंगे नहीं। जिस प्रकार गजेंद्र ने, उसका अंतिम क्षण था, सब कुछ उसने कोशिश की, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा तो उसको लगा कि मजाक में चरण धूली ले रहे हैं। मुझे वैष्णव समझकर मेरी चरण धूली चरणामृत पीना चाहता है, लेकिन वो वास्तव में चरण धूली नहीं, चरणामृत नहीं, उसके खून ही पी रहा था। तो उसको झटकने की कोशिश की, ये समझ गए कि ये चरण धूली किन्हीं ने है, मेरे खून का पैसा है, मेरे को खत्म करने के लिए आया है। तो तुरंत उन्होंने उससे छुटने की कोशिश की, और जैसे ही बाकी लोगों को पता चला, उसकी पत्नी थी, वो तो जंगल का राजा था गजेंद्र, बहुत सारी पत्नियां होती हाथी की, जो राजा होता है उसके बहुत सारे बच्चे थे। तुरंत क्या किया उन लोगों ने, समझ लिया कि अब ये धोखे में है, इसके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते। तो तुरंत वो सब लोग किनारे पे जाकर क्या करने लगे, रोने लगे। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, वही अवस्था हमारी हर एक की है मृत्युशया पे। जो मृत्युशया है वो किसके समान है, एक जलाशय के समान है, और काल रूपी जो मगरमच्छ है वो हमारे पैर पकड़कर खींच रहा है। तभी जलाशय के इर्द गिर्द कौन होते हैं, सभी पति पत्नी बच्चे, और वो हमारा दुख कम नहीं करते, बढ़ाते हैं रो रो के। तो वही वो कर रहे थे, बाकी गजेंद्र के पत्नी बच्चे उसका दुख बढ़ा रहे थे कि हाय हाय क्या हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वही अवस्था में हमें, लेकिन गजेंद्र ने क्या की थी, सुकृति की थी। पिछले जन्म में वो कौन थे, इंद्रद्युम्न महाराज, अपने प्रभुपाद से नहीं, इंद्रद्युम्न महाराज। वो भगवान की गुणगान में हर रोज क्या कहते थे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ब्रह्म संहिता गाते, और जब गाते थे तो क्या बोलते थे, गोविंदम आदि पुरुषम समहो बचावमी। तमहो बचावनी, समहो बचावमी। तो इस प्रकार वो ज्ञान फिर से उनको भगवान ने दे दिया, क्योंकि प्रामाणिकता थी उनकी। तो उस प्रामाणिकता से उन्होंने क्या किया, उस जलाशय से कमल उठाकर अर्पण किया। किसको अर्पण किया, वो कहने लगे, जो भी परमेश्वर है मुझे मालूम नहीं कौन है, लेकिन जो भी है आकर मुझे इस मगरमच्छ से छुड़वाए। तो ये सब लाइव टेलीकास्ट कौन देख रहे थे, देवी देवता, उनका एक काम है, एक तो लाइव टेलीकास्ट देखना या फूलों की वृष्टि करना, बाकी कुछ काम नहीं उनको। भगवान की लीला में। तो हम देखते हैं यहां पे, वो भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, उनको लग रहा था कि टेनिस मैच चल रहा है, हाँ, या रस्सी खींच का खेल चल रहा है, उस प्रकार एक दूसरे की। लेकिन मगरमच्छ क्या है, पानी का प्राणी है, इसके कारण उसकी पानी में शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, हजारों साल तक ये युद्ध चल रहा उनका। उसके विपरीत गजेंद्र जो है वो जमीन का प्राणी है, इसलिए उसकी शक्ति हर क्षण कम होती जा रही थी। इसलिए कहावत क्या है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना, लेकिन वो गजेंद्र ने किया। तो इसके कारण उसकी शक्ति कम होती गई। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं उसमें कि जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहकर हमें भक्ति करनी है, और उस स्थिति में रहकर भगवान को पुकारना है। किस प्रकार, जिस प्रकार गजेंद्र। तो गजेंद्र पुकारने लगा तब भगवान क्या कर रहे थे, द्वारका में भोजन ले रहे थे। तो रुक्मिणी कहने लगी कि ये आपका जो सबसे प्रिय भक्त है गजेंद्र, हाँ, और थी बोलने वाली थी, उसके पहले भगवान हाजिर हो गए वहां पे, तत्पर सेवा। कैसे हाजिर हो गए, हमारे आचार्य बताते हैं, माधवाचार्य संप्रदाय, रामानुज माधवाचार्य संप्रदाय से, वो कहते हैं कि भगवान इतने आतुर होते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों से भी ज्यादा उनको उनकी चिंता होती है। तो जब भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी ने कहा कि गजेंद्र, हाँ, और थी बोलने वाली थी, उसके पहले पहुंचे, कैसे पहुंचे वो बताते हैं कि भगवान ने तुरंत क्या किया, सोचा कि मुझे अभी तुरंत पहुंचना है, तो उन्होंने अपने सारथी जो थे उनका नाम था क्या, दारुक, उनको बोला, लेकिन वो भी पहले भोजन खाके खराटे मार रहे थे, तो उसको उठाने के बाद वो फ्रेश हो जाएगा, फिर रथ तैयार करेगा, बहुत देर लगेगा, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, लेकिन गरुड़ भी खाके बहुत सुस्त हो गए थे। तो भगवान ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सोचकर वो गरुड़ को भी साथ लिए, बीच में जाते जाते आराम से बैठ कर जा सकते, इसलिए एक हाथ में गरुड़ को पकड़ के अपने कंधे पर रखकर भागने लगे, और भागते भागते उनकी धोती छूट गई, तो एक हाथ से धोती पकड़ रहे, एक हाथ से गरुड़ पकड़ रहे और भाग रहे हो। इतने आतुर होते भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए। जिस प्रकार द्रौपदी की कथा में बताते हैं कि भगवान द्रौपदी के पास कैसे पहुंचे, उससे भी ज्यादा इमरजेंसी थी द्रौपदी के, जब वस्त्रहरण हो रहा था असत सभा में, उसने अपने हाथों पहले तो क्या किया, असत सभा में सब महारथियों का आह्वान किया, भीष्म, बड़े बड़े जो महारथी थे उनको आह्वान किया, फिर भी उनको कोई बचा नहीं पाया, कोई आगे नहीं आया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पति थे पांच पांडव जो बहुत ही शक्तिशाली थे, वो समझ कि कम से कम तो बचा सकते हैं क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं, लेकिन वो भी उनको कुछ सहायता नहीं कर पाए। अंत में अपने हाथों से वो साड़ी पकड़ने लगी, हाथ से भी वो पकड़ नहीं पाई क्योंकि दुशासन में 10,000 गज हाथी का बल था, तो अंत में उसने अपने दांत में साड़ी पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, फिर भी वो पकड़ी, तो उसने समझा कि मेरे हाथ की, मेरे बस की बात नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके निस्साय अवस्था से वो पुकारने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो भगवान ने जो गजेंद्र के पहुंचने के लिए जो भी ट्राई किया था, दारुक या गरुड़ जी, वो सब कुछ काम नहीं, उस दिन नहीं थे, एब्सेंट थे सब, इसलिए भगवान ने सबसे तेज रोडवेज पकड़ा, वो था, शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भगवान के पास सबसे जो तेज ट्रांसपोर्ट है अपने भक्त के पहुंचने के लिए, वो है उनके भक्तों के आंसू, उस पर बैठकर उसके सवार होकर भगवान द्रौपदी तक पहुंचे, और उन्होंने अनलिमिटेड सारी सप्लाई की। और कहा जाता है कि जो दुशासन था 10 गज का, उसमें शक्ति थी, वो 10 गज कपड़ा भी नहीं उतार सका। उस प्रकार भौतिक जगत में हमारे भी वस्त्रहरण हो रहे हैं, हमें पता नहीं, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि माया रूपी जो दुशासन के एजेंट है वो भी हमारा वस्त्रहरण कर रहे हैं, पूरी कोशिश में लगे कि कैसे हमें नंगा करे, तो उसी अवस्था में हम है, इसलिए हमें उसी भावना से पुकार रहे जिस प्रकार गजेंद्र ने पुकारा था या जिस प्रकार द्रौपदी ने। अब जब गजेंद्र ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कौन परमेश्वर है, वो आके मुझे बचाए, तो देवी देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये परमेश्वर कौन होता है, परमेश्वर कौन है, हम तो ईश्वर है, परमेश्वर कहां से आया। तो तभी गरुड़ पे सवार होके भगवान वहां पे आते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान आएंगे नाम के रूप में, अगर उस भावना से हम पुकारेंगे। इसलिए तब तक हृदय से पुकारना रोना नहीं आएगा, कितने भी हम नकल करेंगे, क्योंकि वो भावना नहीं रहेगी तो क्या होगा, तब तक हमें रोना नहीं आएगा हृदय से, और कितने भी हम नकल करें रोने की पुकारने की, तब क्या होगी, दूसरी आवाज आएगी, दूसरी चीख आएगी। इस प्रकार रोने की भी कई इस संस्था में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी रिहर्सल होते हैं कैसे रोए, और कई समाज है जहां व्यक्ति क्या होता है मर जाता है, तो उनके समाज में रोते नहीं, इसलिए वो भाड़े से लोग लेके आते हैं। तो रोना इतना आसान नहीं है, भले कि हमारी जीवन की शुरुआत हुई है रोने से। जब माँ के घर में थे और जब बाहर निकलते हैं तो हम रोएंगे नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं समझते। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उस पर क्या करते हैं, थप्पड़ मारकर डॉक्टर। तो हमारे जीवन की शुरुआत हिंसा से होती है, फटाके नहीं बजते गाल के नीचे। इसलिए उसको डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी मीन्स हर रोज की चिंता, डिलीवरी। क्योंकि मां बाप को डिलीवरी है, हर रोज की चिंता है, बच्चा होगा कि बच्ची होगी, मेरे जैसा होगा कि आपके जैसा होगा, इसको स्कूल में डालना है कि किस में डालना है। तो रोज की चिंता है, इसको इसलिए डिलीवरी कहते हैं। और ये जन्म कोई आनंद की बात नहीं है, मनाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिलीवरी जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, लेबर हैप्पीनेस नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, लेबर पेन। पेन का मतलब, पेन का मतलब क्या है, वेदना। फिर भी हम क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। वास्तव में हमें कहना चाहिए हैप्पी बर्थडे टू यू। क्योंकि हम जब किसी का उम्र पूछते तो क्या पूछते हैं, हम कितने आप जवान है पूछते, क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हो चुके हो आप। क्योंकि जन्म के साथ जन्म सर्टिफिकेट होता है, उसको क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके साथ पीछे भी उसके साथ क्या होता है, दूसरा सर्टिफिकेट, वो होता है डेथ सर्टिफिकेट, वो चिपका के हम आते हैं पीछे हमारे। तो इसलिए ये कोई खुशी की बात नहीं है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में हमें, हम नकल भी करेंगे चिल्लाने की पुकारने की, तो तभी क्या दूसरी आवाज आएगी। भले हमने सारी जिंदगी भर हरे कृष्णा किया है, लेकिन अगर भगवान को सच्चे दिल से नहीं पुकारते हैं सारी जिंदगी भर, तो मृत्यु के समय हमारी अवस्था क्या होगी, उस तोते के समान होगी, जिस तोते को सिखाया गया था कि राम 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 बोलो, तो राम राम बोल रहा, तो लेकिन क्यों बोल रहा था, ताकि समय पर दाना और पानी मिले। लेकिन एक दिन बिल्ली ने उस पर झपट मारी और उसका गला पकड़ा, तो राम राम भूल गया और ट्यों ट्यों करने लगा। उस प्रकार हमारी अवस्था है, अगर सिर्फ दाना पाने के लिए हम अच्छा प्रसाद मिल रहा है, अच्छी यात्रा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, भक्तों के संग में अच्छा बिजनेस चल रहा है, मान सम्मान चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आराम से, तो इस भावना से हम हरे कृष्ण करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु के समय उस तोते के समान हमारी अवस्था होगी। इसलिए पूरी अंतकरण से हृदय से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो बद्ध जो आत्मा इतना मूर्ख है कि उसको कैसे चिल्लाना, ये भी शास्त्र बताते हैं। शास्त्र बताते हैं जिस प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का प्रश्न हो, कुछ ही क्षण में उसको मृत्यु का सामना करना है, तो उस अवस्था में वो कैसे चिल्लाएगा बचाने के लिए, बचाओ बचाओ नहीं बोलेगा, बचाओ 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 करके चिल्लाएगा, वो जितनी शक्ति है सारी जिंदगी की वो लगाएगा दांव पे, आखिरी दांव, और कोशिश करेगा खुद को बचाने के लिए कोई संकट आता है तो। जिस प्रकार उदाहरण जाते हैं कि समझो एक व्यक्ति रेल का ट्रैक क्रॉस कर रहा है, रेलवे ट्रैक, जो क्या बोलते हैं ब्रिज होता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी में हरी में हो और हरी में भूलकर हरी को वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है, तो अचानक क्या होता है, ट्रेन आने वाली है, उसी समय जो कंट्रोल रूम से ट्रैक चेंज करते हैं तो उसमें उसका पैर फंस जाता है। तो ऐसे समय सोचिए जो सबसे तेज सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है और कुछ ही क्षण है, उस कुछ ही क्षण में उसको क्या करना है, अपने आप को उस ट्रैक से, उस पटरी से जिसमें पैर उसका फंसा है, उससे बाहर निकलना है। और इतना मजबूत होता है वो ट्रैक कि अपने हाथों से अपने कोशिश से हम निकल नहीं सकते। जब तक पूरी हृदय की आवाज निकालकर पूरी शक्ति लगाकर जब तक हम पुकारते नहीं, किसको पुकारते नहीं, जो कंट्रोलर रूम है जहां ऊपर बैठे थे, जहां से वो रेलवे ट्रैक चेंज करते हैं, उस आदमी को, उस कंट्रोलर को पुकारते नहीं, कंट्रोलर को पुकारते नहीं, तब तक हम नहीं बच सकते। क्योंकि ट्रेन तो इतने फास्ट में होती है तो स्पीड में उसको दिखाई देता जो ड्राइवर होता है उसको। तो ऐसे समय वो कैसे चिल्लाएगा, सारी शक्ति लगाकर उस प्रकार में अंतकरण से नाभि से हमें पुकारना है। तो ये उदाहरण बहुत हमारे जीवन में लागू है। हम भी क्रॉस कर रहे हैं रेलवे ट्रैक, हम भी इस दो ट्रैक में फंस गए हैं, ना तो हम घर के हैं ना तो घाट के, ना तो हम भौतिक जगत में हैं ना आध्यात्मिक जगत में, और हम क्रॉसिंग कर रहे हैं भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में। और सबसे सुपर फास्ट ट्रेन जिसके स्पीड का अंदाजा अभी तक किसने लगाया नहीं और लगा भी नहीं सकता, वो काल रूपी ट्रेन, मृत्यु की ट्रेन हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसे समय हम जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो ऊपर बैठ के सब ट्रैक्स, सबके जीवन के ट्रैक्स चेंज कर रहे हैं, उनको हमें पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी जाकर हमारे जीवन का ट्रैक बदल सकता है। जैसे अजामिल को दूसरा अवसर मिला, सेकेंड चांस, वैसा हमें भी मिलने का चांस हो सकता है, और फिर से हम गंभीर होकर फिर से भगवत धाम जाने का चांसेस बहुत है। इसलिए उस अंतकरण से, उस हृदय से पुकारना है। या दूसरा उदाहरण देता है शास्त्र कि जिस प्रकार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति अपने जीवन की पूंजी, सारे जीवन की पूंजी लेकर दूसरे प्रदेश जा रहा है, और अचानक जंगल में क्या करते हैं, लुटेरे उसको हमला करते हैं, उसके जीवन की पूंजी लूटना चाहते, उस पूंजी के बिना उसका दूसरा कुछ नहीं है, सब कुछ पैकअप करके वो प्रदेश दूसरा बिजनेस के लिए जा रहे हैं। ऐसे समय वो कैसे पुकारेगा, जितनी भी शक्ति है लगाकर वो अंतकरण से पुकारेगा। तो हमारी व्यवस्था वही है, सबसे अनमोल जो खजाना है हमारा कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में है, वही लूट रहे हैं जब हम इस भौतिक जगत में, जो क्या है, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, ये भी एक जंगल ही है। किसका जंगल है, इंद्रिय भोग का। ऐसे जंगल से जब गुजर रहे भोग करने के लिए, तब छह लुटेरे अचानक हमला करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर मच्छर भी तकलीफ देता है लेकिन उतना नहीं। तो ऐसे लुटेरे जब हमला करते हैं तो ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, सारी जिंदगी की अमानत है, कृष्ण प्रेम वो लूटने वाला है। तो ऐसे समय हम कैसे पुकारेंगे, उस भावना से हमें पुकारना है। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हरिनाम की शरण लेनी है। और कैसे शरण लेनी है ये भी बताया शास्त्र में, बहुत सुंदर दो उदाहरण बताए। जिस प्रकार जो मछली होती है, वो मछली पूरी तरह क्या करती है, पानी के प्रभाव का शरण लेती है, इसलिए वो आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी तैर सकती है। उसके व्यतिरिक्त जो जंगल का राजा है, जमीन का राजा है, वो है हाथी। वो पानी के प्रभाव में अगर रहेगा और पानी इतना जोर से बह रहा है नदी का, वो बह भी सकता है उसमें, क्योंकि उसने पानी के प्रभाव की शरण नहीं ली। उस प्रकार हमें एक मछली के समान इस हरिनाम का जो समुद्र है, उसे क्या कहते हैं, हरिनाम का जो समुद्र है उसे भक्ति रसामृत सिंधु या हरिनामामृत सिंधु, द नेक्टर इन ओशन ऑफ होली नेम, उसकी शरण लेने हैं। तो दूसरा एक उदाहरण बताते हैं शास्त्र में, पुराण में, कि जब शरण लेते हैं तो इधर उधर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतनी हमें शरण लेनी है। क्योंकि बताया जाता है उदाहरण एक कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर के सारे बालों को आग लगी है, सारे शरीर को आग लगी है, और वो घबरा के पानी का जो जलाशय है, सागर है, उसके ओर भाग रहा है। लेकिन रास्ते में क्या होता है, हाँ, गांव, जिस गांव से उसको गुजरना होता है उसके गांव के सब तथाकथित मित्र परिवार के सदस्य आराम से गरम गरम जलेबी खा रहे हैं, ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, गरम गरम दूध है उसमें डुबा डुबा के जलेबी खा रहे हैं और देखते हैं भाग रहा है तो कहते हैं अरे दोस्त कहां भाग रहे हो, थोड़ा आ जाओ गरम गरम जलेबी खाओ गरम गरम। तो बोलता नहीं नहीं मेरे शरीर को आग लगी है, बालों को आग लगी है, मुझे तुरंत जाना। नहीं आग तो बाद में बुझाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आग तो लगी है ना, तो बाद में बुझाना, थोड़ा गरम गरम खा लिया ना, हाँ कांटे से कांटा तो निकालेंगे हम, गरम गरम जलेबी खाकर आग को ठंडा कर देंगे हम। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो होटल में जाकर आराम से बैठेगा, गरम गरम जलेबी खाना शुरू कर देगा। उसी प्रकार हम मूर्ख के समान है, क्योंकि संसार दावा नल लीड लोका त्राणे या कारुण्य घना घना। तुम हरेक के हृदय में, हरेक के अंतकरण में ये दावाग्नि फैल चुका है, आग लग चुकी है करोड़ों जन्म से, उसके बुझाने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। आग क्या है, अनर्थों की आग, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, अनेक मन के विचारों की आग, हाँ जो अहंकार है उसकी आग, जो दूषित बुद्धि है मन है उसकी आग, हाँ बाकी परिवारों के लोगों से मिलने वाली आग। तो इस प्रकार जब हम यमराज के दरबार में जाते हैं या नरक में भी जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पे कोई आग नहीं है, वहां पे जो आग है वो हर कोई अपने अपने आग लेके आता है और अपने को खुद को जलाता है वहां पे। तो वहां पे आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नरक में अपनी अपनी जो आग है जो जल रही है मृत्यु के बाद भी वही काफी है आपको जलाने के लिए। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम भी उसी प्रकार भाग रहे हैं, हमें हरिनाम मिला है, फिर भी कभी कभी रास्ते में क्या होता है, तथाकथित मित्र मिलते हैं, बोलते हैं क्या कर रहा है, हरे कृष्णा थोड़ा इधर आ जाओ, गरम गरम जलेबी खाओ, थोड़ा भोग करो। हाँ तो हम जब रुकते हैं तो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो आग बुझाने से पहले गरम गरम जलेबी खाना चाहता है, इंद्रिय भोग करना चाहता है। इसलिए ये आग कभी बुझती है जब गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। जब गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा कभी होती है, जब कृष्ण की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। तो ऐसे जो गुरु है वो के बादल के समान है, वो बादल रूपी गुरु है जो हमारे जीवन में वर्षा लाते हैं। उस वर्षा से ही, उस हरिनाम की वर्षा से ही हमारे अंदर जो अग्नि लगी है काम क्रोध की अनर्थों की, जो भी अग्नि है वो बुझ सकती है। क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर होता है, दावाग्नि होता है, बकेट से बैरल के पानी से या कोई अग्निशामक से बुझ नहीं सकती। उसको बुझाने की ताकत एक में है, वो है जब तक भगवान की कृपा से आकाश से जो बादल है उनके द्वारा जब पूरी तरह से वर्षा नहीं होती तब तक वो दावाग्नि बुझ नहीं सकती। उसी प्रकार जब तक गुरु की कृपा से हमें महामंत्र मिलता नहीं और प्रामाणिकता से ध्यान पूर्वक उसका जप नहीं करते, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे, तब तक कोई संभव नहीं, कोई बचा नहीं सकता आपको। 33 करोड़ देवी देवता नहीं बच सकते, शिव जी नहीं बचा सकते, ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते, एक ही व्यक्ति बचा सकते, वो है मुकुंदा। इसलिए हमें ऐसे मुकुंद की शरण लेनी है। तो ये होगी मृत्यु का डर होना चाहिए। इस प्रकार मृत्यु कभी भी आ सकता है, किसी भी भेष में आ सकता है। हाँ जिस प्रकार इस हरे कृष्णा जो मंदिर की जो जगह है जिसको कुंपन डाला है हमने, उसी प्रकार कई लोग अपने घर के जमीन के ऊपर कुंपन डालते हैं, फेंस डालते हैं और उस पर क्या लिखते हैं, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति इसमें घुस नहीं सकता। लेकिन मृत्यु ऐसा ट्रेसपासर है जो ये बोर्ड देखकर भी अनदेखकर अंदर घुस जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शास्त्र ने बताया मृत्यु ऐसी व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, अतिथि, उसको डेट टाइम की कोई परवाह नहीं, वो बिना बोले आएगा और जरूर आएगा, एज श्योर एज डेथ। तो मृत्यु को क्या कहते हैं? अतिथि। तो मृत्यु ऐसी व्यक्ति है जिसको कोई मिस यूनिवर्स बहका नहीं सकती अपने शरीर के अंग प्रदर्शन करके। कोई है मिस यूनिवर्स, मिस क्रिएशन, जो अपने अंग प्रदर्शन से मृत्यु को बहका कर वापस भेजेगी? नहीं। कोई है इतना बड़ा धनवान व्यक्ति बिल गेट जो मृत्यु को रिश्वत दे और कहे कि कल आ जाओ, कल का अपॉइंटमेंट आपका? नहीं। वो क्या करेगा मृत्यु को? मृत्यु क्या करेगा? उसको गेट पर लेकर जाकर बाहर निकालेगा। हाँ, बिल गेट को भी, या बिल में छुपा हो तो उसको बाहर बोलेगा, गेट आउट बिल। बिल से बाहर आ जाओ गेट। और सबसे जो निष्णात है शास्त्र में, वेदों में, पारंगत है, बड़ा पंडित है, ऐसा विद्वान शास्त्रीय विवाद में मृत्यु के का साथ वाद विवाद नहीं कर सकता। वो अनेक अनेक शास्त्रों को कोट करेगा, हाँ, स्पष्टीकरण करेगा और बोलेगा कि आप मुझे कैसे पर नहीं पकड़ सकते। वो बोलने से पहले उसको गला दबा, हाँ, पकड़ कर लेके जाएंगे उसे। इसलिए ऐसे कई लोग, मूर्ख लोग हैं जो मृत्यु को टालना चाहते थे। जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर कथा बताते, बंगाल की एक बंगाली कथा। एक मूर्ख व्यक्ति था, उसने सोचा कि जब मृत्यु आती है तो पकड़ने के लिए कौन आते हैं? यमदूत या यमराज आते हैं। और वो तो क्या है, भगवान के भक्त है। तो भगवान के भक्त है वो गंदी चीजों को पकड़ते नहीं या गंदी जगह जाते नहीं। इसलिए उसने क्या सोचा, मृत्यु के समय मृत्युशय पर लेट कर मैं अपने शरीर की विष्ठा अपने शरीर को लगा लूंगा, लेप लूंगा उसको। उस प्रकार उसने अपनी विष्ठा को सारे शरीर पर लेप दिया। और जब मृत्यु का समय आया तब यमदूत आए और उसके पास आते ही बोले कि दुर्गंधी कहां से आ रही है, इधर उधर देखने लगे, टॉयलेट तो नहीं नजदीक दिखता या कोई गंदगी तो नहीं थी। तो अंत में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो उनको समझ में आया कि बहुत ही चालू आदमी है। चालू राम चालू काम। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत नाक पकड़ के वो चले गए। तो उठकर नाचने लगा कि यमदूत को मैंने फंसा लिया, फंसा करके। तो कुछ ही क्षण में वापिस वो यमदूत आए, लेकिन इस समय अकेले नहीं आए, आते समय दो फर्स्ट क्लास सुअर लेके आए। समझ गए आप? दो सुअर लेके आए और बोला कि इसका जो लेप है उतार दो। तो सुअर भी कई दिनों से भूखे थे, तुरंत टूट पड़े। इस प्रकार मृत्यु को हम बहका नहीं सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, फंसा नहीं सकते या वाद विवाद नहीं कर सकते। इसलिए हमें जानना है कि हमारे पास बहुत ही समय कम है, कम वक्त है। गाली नहीं दे रहा हूं मैं, कम वक्त है बोल रहा हूं। कम बहुत ही कम वक्त है, कम वक्त है। समय बहुत ही कम वक्त है, हैं? कम बहुत ही कम है। इसलिए जल्द से जल्द पुकारना चाहिए, रोना शुरू करना चाहिए। नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। नॉट सीइंग डेथ जो इनेविटेबल है, जो निश्चित है, उस चीज को अनदेखा करना या उसकी तरफ ध्यान न देना, उससे क्या होता है, हम लापरवाही बनते हैं। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द पुकारना है हरे कृष्ण महामंत्र। जिस प्रकार ब्राह्मण ने और मोचिनी भी दोनों ने पूछा कि मेरे पास कितना समय है, कितने समय में हम भगवत धाम जाने वाले हैं। नारद को पूछा कि नहीं, जो श्रद्धा की कथा थी, मोची था और दूसरा ब्राह्मण था, तो एक को पूरी विश्वास थी, श्रद्धा थी कि भगवान हमें निश्चित रूप से भगवत धाम लेके जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण था, बहुत पंडित था, लेकिन उसने जब सुना कि भगवान एक सुई की नोक से हाथी को पार करे, तो उसका विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं थी। इसलिए भगवान कहने लगे कि इसको करोड़ों करोड़ों जन्म लगेंगे भगवत धाम आने के लिए। लेकिन मोची ने क्या कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं वो बरगद का पेड़ है, तो एक छोटे से बरगद के पेड़ में भगवान ने इतना बड़ा वृक्ष अंदर छुपा के रखा है। तो इतने से छोटी के सुई के नोक से हाथी को पार करना कोई मुश्किल बात नहीं। तो उन दोनों ने पूछा, क्या पूछा, कि कितना समय हमें भगवत धाम जाने के लिए। और किसने पूछा, खटवांग महाराज ने पूछा कि मेरे पास समय कितना बाकी है। तो उस प्रकार हमें सोचना चाहिए, खुद को पूछना चाहिए कि मेरे पास कितना समय है। तीसरा कौन पूछा, परीक्षित महाराज ने। उन्होंने पूछा नहीं लेकिन उनको पता चला कि 7 दिन बाकी है। तो किस प्रकार त्याग किया उन्होंने, एक प्रकार जिस प्रकार व्यक्ति मल को त्याग करता है। लेकिन कलयुग में हम इतने आसक्त है कि मल भी त्याग करना कठिन हो गया है, क्योंकि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया। अभी लोगों को मल त्याग करना भी अभी कठिन हो गया कलयुग में। पहले के जो राजा थे, राजर्षि थे, वो अपने ऐश्वर्य को मल की तरह त्याग करते थे, लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, मल त्याग करना भी कठिन हो गया। ये समस्या है कलयुग में। तो हमें वो वैराग्य भी नहीं है मल त्याग करने का, तो हमारा ईश्वर क्या त्याग करेंगे हम। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछा कितने दिन बाकी है, पूछा नहीं लेकिन उनको बताया गया 7 दिन है। उसी प्रकार हमारे पास भी 7 ही दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बस आगे कुछ है 8वां दिन, वही 7 दिन है, वो 7 दिन है मृत्यु के बाद। हाँ, तो किसी ना किसी एक दिन हमारा पत्ता कट होने वाला है। हाँ, क्योंकि यमराज को, यमदूत को हमारा पता बिल्कुल मालूम है कहाँ होगा वो, किस जगह होगा। जिस प्रकार एक बहुत सुनकर कहते हैं, बगदाद में एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसका नौकर था, वो हर रोज रसोई में काम करता था। हर रोज उसका सेवा क्या था, सुबह सुबह जाकर सब्जी मंडी में, सब बड़ी सब्जी मंडी थी उसमें जाकर सब्जी खरीदना, घोड़े पे सवार होकर वो जाता था और हर रोज सब्जी लेकर आता था सुबह सुबह। तो एक दिन जब सब्जी मंडी जा रहा था, दूर से देखा कि मृत्यु उसकी राह देख रहा है, उसको बुला रहा है, तो घबरा गए और पीछे बिना सब्जी लिए सब्जी मंडी से भाग के घोड़े पे सवार होकर आ गया और अपने मालिक से कहने लगा कि मुझे तुरंत मेरा अकाउंट क्लियर करो, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे बहुत धोखा है, मैंने आज मृत्यु को देखा और वो कभी भी आ सकता है, मेरा पीछा कर रहा है। तो कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं, नहीं बोला, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही है। तो इतनी सारी उसने सेवा की थी कई सालों से, तो कहा कि ये घोड़ा तुमको इनाम है और ये सारा तुम्हारा अकाउंट क्लियर हो गया, तुम यहां से तुरंत निकल जाओ अगर तुमको डर लगता है। तो भागते भागते वो रेगिस्तान से दूसरे गांव में चला। तो दूसरे दिन उस मालिक को ये वार्ता मिली कि दूसरे गांव में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो मालिक को बहुत बुरा लगा कि इतना इना वफादार नौकर था, उसको मैं बचा नहीं पाया। तो अगले दिन घर में कोई नहीं था, इसलिए वो खुद सब्जी लाने के लिए मंडी में गया। तभी फिर से उसने मृत्यु को देखा, मृत्यु ने उसके पीछे हाथ मारकर कहा, किसको ढूंढ रहे, बोला सब्जी लाने के लिए, लेकिन आप किसके तो तलाश है, आपको दुखी लगते। तो बोला मेरा ऐसा जो नौकर था, वफादार नौकर, उसकी मृत्यु हो गई। तो कैसे मर गया वो, वो पूछने लगे। तो मृत्यु ने कहा कि मैंने उसको बचाने की कोशिश की, सब कुछ दिया उसको, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हुई और यहां नहीं दूसरे गांव में। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसे उसकी मृत्यु हुई दूसरे गांव में। तो मैंने भी मृत्यु कहने लगा, मैंने भी जब पहली बार देखा कल उसको, तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा था, ये आदमी इधर क्या कर रहा है, उसकी मृत्यु तो दूसरे शहर में है, इधर क्या कर रहा है। तो इस प्रकार आपने उसको मदद की, आप एक निमित्त बने उसको वहां तक ले जाने के लिए। उस प्रकार मृत्यु जहां लिखा है, जिस जगह लिखा है, जिस प्रकार लिखा है, वो आएगा, उससे बच नहीं सकते। उससे पहले हमें क्या करना है, अंतकरण से पुकारना है। तो इसलिए हमें इस प्रकार पूछना है कि मेरे पास समय कितना है। जब रात को सो के उठते हैं सुबह सुबह, तो बिछोने में हमें प्रश्न करना है कि कल तो मैं बच गया भगवान की कृपा से, आज कोई गारंटी नहीं, आज कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें रेडी होना चाहिए। जिस प्रकार एक बार प्रेरणा प्रोग्राम राधा गोपीनाथ में चल रहा था, उसके बाद हिज होलीनेस राधामन महाराज सबको मिलने के लिए नीचे घूम रहे थे, तो एक नया लड़का आया था जो US में काम करता था। तो उसका नाम था, महाराज से बात करने लगा, वो कहने लगा कि मेरा नाम है कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी। तो नया था, जप नहीं कर रहा था। महाराज ने पूछा, तो अंत में पूछा, आपका नाम कृष्णा रेड्डी ठीक है, बट आर यू रेडी फॉर कृष्णा? तो एकदम घबरा गया हो, कभी सोचा नहीं था उसने ऐसे, क्या मैं भगवान के लिए तैयार हूं, मृत्यु के लिए तैयार हूं? इसलिए ये प्रश्न हमें रोज करना चाहिए। कल तो मैं बच गया, लेकिन आज कोई गारंटी नहीं, आज मालूम नहीं। इस भावना में रहेंगे तो हमें एक लाइक क्या होगा, वो तीव्रता आएगी, वो गंभीरता आएगी जप करने में और पुकारने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो रोना या क्रंदन करने का मतलब क्या है कि हमें भगवान के लिए रोना है, बाकी चीजों के लिए नहीं। लेकिन तकलीफ क्या है, हमें भगवान के लिए रोना आता है, बाकी सब चीजों के लिए रोना आता है। कोई आपत्ति आने से पहले हम रोना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति क्या, मृत्यु, उसके लिए हम नहीं रो रहे। तो अगर रोना नहीं आ रहा है तो हमको भगवान के पास जाके रोना है कि मुझे रोना नहीं आ रहा है। अगर रोना नहीं आ रहा तो क्या करना है, भगवान के पास जाके रोना है हमें कि मुझे रोना नहीं आ रहा है। तो भगवान हमें बुद्धि देंगे किस प्रकार उनको पुकारना है। तो रोने का मतलब क्या है, एकदम सरल है। अपने जप के समय और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण और श्रवण के समय बहुत ही गंभीरतापूर्वक हृदय से भगवान को पुकारना है, इसको ही रोना कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी सेवा है हरिनाम के प्रति, नाम प्रभु के प्रति। वो सेवा क्या है, स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें, ये सबसे बड़ी सेवा है। इतना भी अगर करेंगे ना तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं खुद पे और भगवान पे। तो स्पष्ट रूप से उच्चारण करना और ध्यानपूर्वक सुनना हर एक महामंत्र। तो 16 मालाएं कभी कभी बहुत कठिन लगता है, इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं, 1 मंत्र एट ए टाइम। ऐसा मत सोचिए कि हमको 16 माला करना है, सिर्फ जो महामंत्र बोल रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दो आप, उसका स्पष्ट रूप से उच्चारण करो और स्पष्ट रूप से सुने, तो क्या होगा, बूंद बूंद से बने 16 माला। तो सोचते रहेंगे कि 16 माला करना है, 16 माला करना है, इस टेंशन में आपका ध्यान चला जाएगा। उससे अच्छा है जो क्षण है, जैसे हमने बोला कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस का मतलब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट मोमेंट है, हाँ, जो क्षण आपके पास है अभी जब कर रहे हैं, वो क्षण को पूरी शक्ति लगाकर भगवान के नाम में लगा दो बस। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्षण क्षण से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट करो पहले, स्पष्ट रूप से उच्चारण और स्पष्ट रूप से उसको सुनना। तो ध्यान पूर्वक या अटेंशन का मतलब है भक्तिमय सेवा। अटेंशन ऑल्सो मीन्स डिवोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटेंशन का मतलब ये नहीं कि जैसे पुलिस परेड में होता है अटेंशन, सावधान, विश्राम, वो नहीं। अटेंशन का मतलब है भक्तिमय सेवा। अटेंशन मीन ऑल्सो मीन्स डिवोशन। जैसे सोचिए, उदाहरण दिया जाता है कि नौकर है, सालों साल से एक ही सेवा कर रहा है, एकमात्र सेवा कर रहा है। उसकी सेवा क्या, हर रोज भगवान की प्लेट बनाना, लेकिन हर रोज एक नई गलती कर रहा है। कभी रुमाल नहीं रहता, कभी अगरबत्ती नहीं रहती, हाँ, कभी दिया नहीं रहता, या कभी बात ही नहीं रहती, कभी लोटे में पानी नहीं होता। इस प्रकार हर रोज वो गलती कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप, एक ही सेवा है हर रोज की, सालों साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, लेकिन हर रोज कोई ना कोई गलती कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मूर्ख कहेंगे, हाँ, बेवकूफ कहेंगे, लेकिन वही गलती हम कर रहे हैं, हर रोज वही कार्य हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, उसमें हम गलती कर रहे, ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे। इसलिए शास्त्र भी हमें मूर्ख ही कहला सकता है। तो अगला प्रश्न आता है कि अगला मुद्दा था कि हम ध्यानपूर्वक जप क्यों नहीं कर पाते। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि उसके 3 कारण बताते हो हरिनाम चिंतामणि में। पहला कारण है, हमारा मन पहले से ही व्यस्त है भौतिक आसक्ति में, वस्तुओं में। पहले से क्या है, जो पार्टी है भरी है, उस पर कुछ लिखा गया है, भौतिक इच्छाएं। तो जब पार्टी पहले से भरी है तो उस पर फिर से वापिस हम लिख नहीं सकते हरे कृष्ण महामंत्र, संभव है, लिखेंगे भी तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको सबसे पहले उसको साफ करना है। इसलिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं भक्तिमय, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारी भौतिक इच्छाओं को हम धीरे धीरे कम करें और पार्टी हमारी धीरे धीरे साफ करें, चेतो दर्पण मार्जनम, तभी जाकर हम लिख सकते हैं उस पार्टी पे हरे कृष्ण महामंत्र। तो मन पहले से भौतिक इच्छाओं में व्यस्त है, आसक्त है, जिस प्रकार हमने बताया, जब तक मन रूपी लंगर विषय वस्तु से निकालते नहीं तब तक अपने जीवन की नाव आगे नहीं बढ़ेगी। कितना भी आप चलाते रहो, दिन रात हरे कृष्ण करते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले हमें भक्तिमय ठाकुर कहते हैं, सबसे पहले उस मन रूपी लंगर को विषय वस्तु से बाहर निकालना है, तभी आगे बढ़ने की संभावना है जीवन के नैया। दूसरा क्या बोलते हैं, हम बहुत ही आलसी है आध्यात्मिक दृष्टा, भौतिक दृष्टा बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, तीन चार जॉब कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भौतिक दृष्टा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टा बहुत ही आलसी है, जप करना भी असंभव है, हमें जप करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा आलसी। तो ये दूसरा कारण बताते। तीसरा कारण क्या, बुरी आदतें। बुरी आदतें का मतलब हमने कल बताया, जिस प्रकार टीवी देखते हुए या कंप्यूटर पे काम करते हुए, खिड़की से हवा देखते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, जो भी बुरी आदतें जो भी हमें भगवान के नाम से दूर लेके जाती है वो सब बुरी आदतें हैं, या स्पष्ट रूप से उच्चारण करने में हमें मदद नहीं करती, जिस प्रकार सोलाक्षर हम कभी बोलते नहीं वो भी बुरी आदत है। तो सभी ऐसी बुरी आदतों को हमें बदलना है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और कुंती महारानी भी कहते हैं कि एक जीवात्मा भगवान को पुकार नहीं सकता। कौन नहीं पुकार सकता, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, ये जो चार गुण है वो हमें भगवान को पुकारने से रोकते हैं। क्या चार गुण है, भौतिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। पहला क्या है, जन्म, बड़े परिवार में जन्म लेना, उससे क्या होता है, अहंकार होता है, मैं इस परिवार से हूं, मेरे दादा ये थे, मेरे परदादा थे, वो थे, इस प्रकार जो अभिमान है उस कारण हमें कोई लगता है कि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे परदादा इतने बड़े थे कि भगवान क्या कर सकते उसके सामने, हाँ, इतनी बड़ी स्टेट छोड़ के चले गए, हाँ। तो इस प्रकार भगवान को पुकारने की जो आतुरता है, गंभीरता है, वो नहीं आती जब हम बड़े परिवार से जुड़े होते हैं। बहुत कठिन है, बहुत रेयर है, बहुत संभावना कम है कि बड़े परिवार से होकर भी वो भक्ति में लगा है। जिन्होंने बहुत बहुत सुकृति की है उनको ही क्या लाभ होता है, बड़े परिवार होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में आना। दूसरा क्या है, जन्म ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य है कि उसके कारण भी हम भगवान की सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। बाद में सुंदरता, इतने सुंदर है, मिस यूनिवर्स है, सारा संसार हमारी ओर देख रहा है, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हम ही हो भगवान सर्वाकर्षक, जिसके कारण सारा दुनिया सारा संसार हमें तरफ देख रहा है, उसके कारण सुंदरता के कारण भगवान के सामने हम झुक नहीं सकते। सोचने लगते हैं ये नया कॉम्पिटिटर कौन है, इस प्रकार जन्म ऐश्वर्य, बाद में तीसरा सुंदरता, और चौथा ज्ञान। कई कई लोगों का ज्ञान इतना होता है कि वो सोचते कि मुझे बाकी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार ये चार गुण है वो हमें अपने अंतकरण से हृदय से पुकारने के लिए मदद नहीं करते। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं एक चार गुण भक्ति के लिए बाधक है। और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम भव सागर पार कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भव सागर पार करने के लिए अगर हमें तैरना भी आता है तो हमारे कंधे पे जो बोझा है अनर्थों का, या जो आसक्ति हमने कंधे पे ले ली है करोड़ों जन्म से, जिसके प्रति हम आसक्त है, ऐसी चीजें हमारे कंधे पे है, उनको उतारने के लिए हम तैयार नहीं। तो ऐसे हालत में बोझा लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर, पत्थर ने पहाड़ लेकर कैसे तैर सकते आप, निश्चित रूप से आप डूब जाएंगे। इसलिए इन आदतों को समंदर के किनारे रखना है, निकाल के। या भगवान के घर में भी जाना है तो पहले दरवाजे पे, दरवाजा इतना छोटा होता है कि वो अनर्थों को बाहर निकाल के रखना पड़े। आपका जो भी लगेज है इसको हमें अटैचमेंट कहते हैं, तो अटैचमेंट देख सके, हरे के पास अटैची है इसलिए उसको अटैचमेंट बोलते हैं। अटैची बोलते हैं ना, बहुत अभिमान से कहते कि मैंने अटैची बंबई में खरीदी। तो अटैची है वो बाहर रख के ही भगवान के छोटे से मंदिर में घुसना पड़ता है नम्र होकर। इसलिए जो पुराने मंदिर थे उनके दरवाजे बहुत छोटे थे, खिड़की के समान, उससे अंदर घुसते, ताकि आप अंदर जाने से पहले भगवान का दर्शन करने पहले नतमस्तक हो जाए, झुक जाए थोड़ा। तो ये प्रैक्टिस होती थी पहले अंदर घुसने से पहले। तो नम्रता कभी आएगी जब हम अनर्थों को बाजू में रखेंगे। इसलिए अगला जो अनर्थ है हमारा वो है, जैसे हमने बताया, कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, सबसे बड़ा अनर्थ है। बाकी अनर्थों को हम टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन ये जो अनर्थ है बहुत ही सूक्ष्म है और इसके कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए, बंधे हुए। कांचन कामिनी और प्रतिष्ठा, विशेष करके दूसरों को इंप्रेस करने की जो हमारी इच्छा है, अंदर की जो इच्छा है, जो भी कार्य करें उसका उद्देश्य क्या होता है कि कैसे मैं दूसरों को इंप्रेस करूं, कैसे प्रभाव डालूं दूसरों व्यक्ति पे, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो। पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण है और स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण है। इस प्रकार ये जो भौतिक जीवन है उसको क्या कहे, मैथुन आगार। तो ऐसे भौतिक जगत में बहुत कठिन है इससे बाहर निकलने के लिए। ये ऐसी अनदेखी क्या है, श्रृंखला है, बेड़ी है। साधारण जो बेड़ी होते हैं पैर में, हाथ में बांधने के बाद आदमी घूम फिर नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, एक कदम उठाना भी उसको मुश्किल होता है। लेकिन भगवान ने ऐसे अनोखी अनदेखी ये बेड़ी बनाई है जो हाथ पैर में होने के बावजूद भी आदमी भागने लगता है। सोचिए ऐसी कैसी ये बेड़ी है। और ज्यादा वो क्या होता है, पैशनेट होता है वो भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए। तो ऐसे बेड़ी से छुटकारा पाना बहुत कठिन है, विशेष करके कांचन कामिनी प्रतिष्ठा। और जो इंप्रेस करने की हमारी वृत्ति है वो बहुत ही धोखादायक है भक्ति में। और किसको इंप्रेस कर सकते, भगवान को तो नहीं कर सकते, भक्तों को भी नहीं कर सकते। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, न धनम न जन्म न सुंदरी तृणादपि। तो ऐसे भक्तों के इंप्रेस करते, और बाहर के तो लोग इंप्रेस नहीं हो गए, आपकी शिका देख के, आपका होलिया देख के। इसलिए इंप्रेस किसको कर रहे हैं हम, तो खुद को ही उल्लू बना रहे हैं हम। इसलिए ये जो टेंडेंसी है, ये जो अनर्थ है बहुत कठिन है, इतना सूक्ष्म है कि हम जानते भी नहीं कि हम ये कार्य कर रहे कई करोड़ जन्मों से। इसलिए इसको क्या कहे, कांचन कामिनी प्रतिष्ठा शुक्र निविष्ठा। भक्ति सिद्धांत तो इतना उस पर हेवी होते हैं, उन्होंने एक भजन भी लिखा उस पर। तो कहते हैं एक किस प्रकार है कि एक सुअर की विष्ठा खाने के समान है। साधारण गांव का सुअर नहीं, वो तो अच्छा है, उसका जो विष्ठा होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, बहुत ताजा होता है। लेकिन जो जंगल का सुअर होता है, वो जंगल का सुअर कुछ भी खाते रहता है, उसके कारण जो उसकी विष्ठा होती है इतनी हार्ड होती है, इतनी कठिन होती है कि उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो करोड़ों जन्मों से हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, एंड जस्ट डाई हो रहे हैं हम, जस्ट मर रहे हैं हम इस विष्ठा को खाते खाते। तो उससे कम से कम हमें घृणा होनी चाहिए कि मैं एक कार्य कर रहा हूं, कैसे सुअर का विष्ठा जो है कांचन कामिनी प्रतिष्ठा वो करोड़ जन्मों से मैं खाने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें आनंद ले रहा हूं। तो सबसे पहले उसके प्रति हमें घृणा होनी चाहिए, और कैसे इससे बाहर निकले ये हमें सोचना चाहिए। तो उसमें सॉल्यूशन क्या है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश, और दूसरा है तृणादपि सुनिचिना। इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। और दूसरा, जैसे गजेंद्र ने बोला, गोविंदम आदि पुरुषम समहो बचावमी, किसी तरह इस सबसे सूक्ष्म अनर्थ से मुझे बचाओ, तभी जाकर हम इस अनर्थ से बच सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि इतना कठिन क्यों है। ध्यानपूर्वक जप करना। ऐसे देखा जाए तो 16 अक्षर में हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षर का ही है, और उसको बार बार उसमें तीन ही शब्द आते हैं, राम कृष्ण और हरे। इसलिए जो वारकरी होते क्या बोलते हैं, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, लेकिन हम क्या बोलते हैं, राम कृष्ण हरि अमसा महामंत्र ले भरी। तो इसमें राधा रानी के 8 नाम है, इसलिए वो बहुत भारी है, क्योंकि राधा रानी हमको भक्ति दे सकते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी कहते हैं, देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी, एंड वी आर जस्ट असिस्टेंट्स, दैट्स ऑल, रूप गोस्वामी कहते हैं। इसलिए जहां तक हम राधा रानी को असिस्ट करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने, उतने हमें भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसे 16 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र में 3 शब्द बार बार बोले, जैसे पुनरुच्चारण किया, लेकिन हमने जैसे बताया पहले भी कि कलयुग के क्या है, नमूने हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, कि 3 अक्षर बोलना भी हमें कठिन जाता है। इसलिए हरे कृष्ण नाम हरि बोले, उस भजन में कहते हैं, फकीरे सकल नाम बोलते पारो केनो हरे कृष्ण नाम बोलना। देखिए सोचिए, सुबह उठने के बाद रात सोने तक कितने शब्द बोले आपने, उसका रिकॉर्ड हम रहे नेक्स्ट, कितने नाम बोले हैं, कितने शब्द बोले हैं। लेकिन ये 3 शब्द बोलने की जब बारी आती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने उस व्यक्ति का दो क्या किया है, द्वेष किया है। उस द्वेष के कारण इस भौतिक जगत में है, और उसी व्यक्ति का जब गुणगान करने की बारी आती है तो बहुत कठिन जाता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितना कठिन है भगवान का नाम लेना, कि जब हम मुंबई में जाते हैं अलग अलग सिग्नल पे प्रसाद बांटते हैं गाड़ी में जाते हुए या रेलवे स्टेशन पे, और भिखारी को कहते हैं प्रसाद लो, हरे कृष्ण बोलो, नहीं बोलो, ले लो प्रसाद, प्रसाद फेंके जाते हैं। नासिक में तो ऐसी घटना घटी थी कि जो बड़ी बस पार्टी थी हमारी सबसे बड़ी, उसमें गोविंद प्रभु थे, बड़े बड़े महारथी थे, माधवाचार्य, गौर गदाधर प्रभु, वो सब गए थे, और उन्होंने नासिक के रेलवे स्टेशन के सामने बस लगाई थी, और सबको पुस्तक वितरण कर रहे थे गीता का, अलग अलग किताबों का। तो भिखारी कई दिनों से वो देख रहा था, एक दो दिनों से, कि लोग पुस्तक वितरण कर रहे, प्रसाद बांट रहे। तो नजदीक आया तो उनको लगा कि बहुत निरागस व्यक्ति है, इसकी अवस्था क्या है, वो पैरों पे चल रहा है, गाड़ी होती ना वो, उस पे चल रहा है, हाथ से गाड़ी ढकलते हो अपने हाथ से, उसके पैर दोनों काम से गए। तो ऐसा व्यक्ति सामने आया, और 3 ऑल्टर थे उसके सामने, आकर वो देखने लगा। तो उनको लगा कि सचमुच ये कोई महान भक्त होगा, इसको प्रचार करना चाहिए, इसको प्रसाद देना चाहिए। इसलिए कई भक्तों ने उसके हाथ में प्रसाद दिया और बोले हरे कृष्ण बोलो। तो इतना गुस्सा होया उसने प्रसाद नीचे फेंका और अपने टूटे हुए पैरों से उसको प्रसाद को जमीन पर घिसने लगा। तो इतना द्वेष है। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज भी है, हमेशा जब वितरण करते थे तो पहले कृष्णा बुक हाथ में देते थे जिसपे राधा और कृष्ण का फोटो है, तो देख के उसका चेहरा देख के पहचानते कि ये व्यक्ति लेने वाला है कि नहीं, क्योंकि हर एक जीवात्मा में वो क्या है, द्वेष है, भगवान ही क्यों भो करे। तो कई कई लोग कहते थे इस भगवान के फोटो की जगह मेरा फोटो और उधर लगाओ, द्वेष से कहते थे, यही इस स्त्री का भोग क्यों कर रहा है, इस प्रकार बोलते। तो इतना द्वेष है हर एक जीवात्मा में। तो ऐसे द्वेष से हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, 3 अक्षर बोलना भी कठिन है, भले हम सुबह से रात सोने तक हजारों करोड़ों शब्द बोलते हैं, हजारों नाम लेते हैं, लेकिन जब तो 3 बोलने की समय आते, बारी आते, तो जिह्वा साथ नहीं देती। इसलिए अंत में क्या कहते हैं, फकीरे तोरे मरण का लेते, 4 जने थे कांदे करे लोहे जाबे स्मशाने घाटे, ओरे तोर मुखे आगुन जिले जीवे तुले की करो बे ताई बोलो ना। वो कहते हैं कि जब समय आएगा मृत्यु का, तुझे 4 लोग कांदा देंगे, कांदा खिलाएंगे नहीं, कांदा देंगे और स्मशान में लेके जाएंगे। स्मशान में जाने के बाद लकड़ी पे सुलाएंगे तुमको, आराम से सो जाओ अभी हमेशा के लिए, और अग्नि लगाएंगे। तब उस जीवा का क्या फायदा है, उस जीवा से कुछ नहीं बोल पाओगे आप, खुद को बचा नहीं पाओगे, जिस जीवा से तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे
राम राम राम।
इसलिए सबसे बड़ा डर है मन को, सबसे बड़ा डर है क्या कि अगर स्पष्ट रूप से उच्चारण करूंगा, ध्यान पूर्वक जप करूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं कहीं का ना रहूंगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए इंद्रिय भोग नहीं मिलेगा, अपना सबका प्यारा इंद्रिय भोग वो नहीं मिलेगा, क्योंकि माया हर रोज मुझे टुकड़ा फेंक रही है इंद्रिय भोग का, जब भी चाहिए तभी। लेकिन भगवान है वो क्या है, जो आवश्यक है वो देंगे, मुझे जो जरूरत है हा? मुझे जो चाहिए वो नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कौन है, परमपिता। जैसे उदाहरण बताया जाता है, कोई एक लड़का है घर से 100 रुपए का नोट चुरा कर पिताजी की जेब से किसी सिगरेट के टपरी में जाता है और पैसा फेंकता है, कहता कि एक ब्रिस्टॉल दो पैकेट। तो जो व्यक्ति है वो 100 रुपए से बंधा हुआ है, उस पैसे से बंधा हुआ है, वो तुरंत ब्रिस्टॉल का पैकेट निकाल कर देगा। वो सोचेगा नहीं कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आया, ये सिगरेट फूंक कर क्या होगा, इसका मृत्यु हो सकता है, वो सोचेगा नहीं, उसे पैसे से मतलब। उसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवता है और जो भी है भगवान के सिवा है, वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। वो सोचेंगे नहीं कि इसके लिए ये योग्य है कि नहीं। लेकिन उसी जगह अगर उस टपरी में उसके पिता होते, समझे पिताजी बैठे हैं और बच्चा आकर 100 रुपए की नोट फेंकता है और बोलता है कि ब्रिस्टॉल दो, तो क्या करेंगे, वो सिगरेट जलाने से पहले उसके कान के नीचे जलाएंगे वो पूछेंगे पैसा कहां से आया, तो सिगरेट का क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार परम पिता है जो इतने कृपालु है कि देखते हैं कि उसके लिए क्या योग्य है। इसलिए मन घबरा जाता है कि मुझे वो इंद्रिय भोग नहीं मिलेगा, अगर माया की वफादारी छोड़ दूंगा हाँ तो क्या होगा, मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए वो तैयार नहीं होता, मन हमें साथ नहीं देता। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मन का कि मन को मालूम नहीं कि इससे भी ऊंचा स्वाद हमें मिलना है, मिलने वाला है, वो है भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में। लेकिन उसको अभी बद्ध अवस्था में अनुभव नहीं, इसलिए जो हाथ का है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो हर रोज मिल रहा है वो छोड़कर वो दूसरी चीज के पीछे भागने के लिए तैयार नहीं। ऐसे कहते कि हाथ से छोड़ू पलटिया चपाटी मंगला नहीं, हाथ का छोड़कर अगर किसी चीज जो भाग रहे उसको पकड़ने के लिए जाएंगे तो हाथ का भी चला जाएगा और जो भाग रहे वो भी हाथ से चला जाएगा। उस प्रकार मन को घबराहट पैदा होती है कि इंद्रिय भोग तो भी मिल रहा है लेकिन क्या गारंटी कि ध्यान पूर्वक जब करूंगा तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, इसलिए मन साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। और सबसे बड़ा उससे घबराहट क्या होती है कि अगर ध्यान पूर्वक जब करूंगा तो मैं भगवान का नित्य दास बनूंगा, और भौतिक जगत में इसको इतना कड़वा अनुभव है किसी का दासत्व करना, किसी की नौकरी करना, कि पूरी तरह से वो जलकर खाक हो गया उसमें, इसलिए फिर से वो धोखा लेना नहीं चाहता। और वो भी नित्य दास जन्म जन्मांतर के लिए किसी की सेवा करना उसको बहुत कठिन लगता है, इसलिए मन क्या करता है, साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतने से छोटे से इंद्रिय भोग के टुकड़े के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो शाश्वत हक है हमारा भगवत धाम, भगवत प्रेम, भगवान की सेवा, उसको भी टुकड़ा देते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, आर के नो माया जाला, इस बहुत ही सुंदर भजन में कहते हैं कि अति तुच्छ भोग आशे बंदी है माया पाशे, माया के पास में क्यों फंसा हुआ है ए जीव ए मन, क्योंकि अति तुच्छ भोग का आशा है उसे और उसके कारण वो फंसा हुआ है, और यही एकमात्र कारण है जो हमें अंतकरण से पुकारने के लिए मदद नहीं करता। इसलिए वी आर एक्सचेंजिंग इटर्निटी फॉर कमिंग टू दिस मैटर्निटी, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे जब चाहे तब इंद्रिय भोग मिलेगा, लेकिन इससे हम बच नहीं सकते, इसलिए ध्यानपूर्वक हमें जप करना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, अगर भगवत धाम को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए आपको दो पंख चाहिए उड़कर जाने के लिए, और वो दो पंख क्या है, एक है अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग और दूसरा पंख है अटेंटिव डीलिंग्स विथ वैष्णवास। अटेंटिव डीलिंग्स विथ वैष्णवास, सदाचार, वैष्णव एटिकेट नहीं रहेगा तो टिकट नहीं मिलेगा भगवत धाम का, वैष्णव टिकट और वैष्णव एटिकेट दोनों समान ही है। जब तक वैष्णव टिकट फॉलो नहीं करेंगे तब तक टिकट नहीं मिलेगा भगवत धाम जाने का। और जब तक अंतकरण से पुकारेंगे नहीं अटेंटिवली, हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम राम
राम। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही चेतना पूर्वक, ध्यान पूर्वक, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली का मतलब है बहुत ही अच्छी भावना से, अच्छी चेतना से हमें पुकारना है। तो ध्यान देने की जरूरत क्या है, इतना सब हमने कहा कि ध्यान पूर्वक करना चाहिए, लेकिन ध्यान पूर्वक देने की जरूरत क्या है, क्या इतना जरूरी है? ये मत समझो कि मजबूरी है, ये समझो कि जरूरी है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत की व्याख्या ही की है, पदम पदम विपदम न तेषा, दिस इज द इटर्नल रियालिटी इन दिस टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड। बहुत अच्छा कोट किया था एक बार हिज होलनेस राधानंद महाराज एक लेक्चर में, दिस इज द ओनली रियलिटी इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड, पदम पदम विपदम नतेशा। इसका मतलब क्या है कि भौतिक जगत किसके समान है, युद्ध भूमि के समान। युद्ध भूमि में क्या, जो जमीन होते हैं उसमें क्या गन्ने नहीं बोते हा? या राइस नहीं बोते जमीन में, उसमें क्या बोते हैं, जमीन के अंदर बॉम्ब्स माइंस होते हैं उसमें। और हर एक कदम उठाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि जो कदम उठा रहा हूं और जमीन पर रख रहा हूं उसके कोई नीचे कोई बम तो नहीं। तो ऐसा ये भौतिक जगत है, हर कदम पे क्या है, धोखा, पदम पदम विपदम नतेशा। तो ऐसे समय हम लापरवाही से ऊपर देखते हुए, इधर उधर देखते हुए घूम नहीं सकते। और विशेष करके मायादेव ने पूरी संसार को आपके पीछे लगाए, सारे शक्ति को आपके पीछे लगाए, क्योंकि पहली बार अपने जप माला हाथ में ली है और माया के साथ युद्ध पुकारा है। तो ऐसे समय भक्तों के लिए माया देवी 24 घंटा काम नहीं करती, वो ओवर टाइम करती है। बाकी समय वो क्या है, बिंदास है, वो सोचते भाग भाग के कहां जाएगा, ये तो मेरे मुट्ठी में है। लेकिन जब पहली बार हाथ में उसी मुट्ठी में वो माला लेता है तो सोचते कि अब ये काम से गया, मेरे हाथ से भागने की कोशिश करे, इसलिए सारी शक्ति लगाती है उसको वापिस अपने गोद में लेने के लिए। इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि हम सबसे धारधार तेज धार, सबसे सूक्ष्म हथियार हाथ में लेके घूम रहे हैं माया को खत्म करने के लिए, माया को परास्त करने के लिए। इसलिए उससे भी वो ज्यादा कोशिश करेगी वो हथियार को निकाल लेने की हथियार से। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करना है। इसलिए हम नंगे हाथ घूम नहीं सकते, हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेन गन HK 108 HK 108 मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र 108 माला की माला जो है वो क्या है, हर एक मोते कारतूस के समान है। अगर स्पष्ट रूप से उच्चार नहीं करेंगे तो कारतूस फड़तूस हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए 24 घंटा ये बॉक्सिंग ग्लोव्स HK 108 हाँ स्टेन गन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि भक्तगण का मतलब है स्टेन गन। भक्तगण का मतलब है उसके हाथ में स्टेन गन होना चाहिए, वो पहचान है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है सही आदमी की पहचान रेमंड्स, उसी प्रकार भक्त की पहचान क्या है, स्टेन गन। भक्तगण का मतलब है 108 HK 108 108 मोती की ये माला जो कभी खत्म नहीं होती, जितनी बार चलाएंगे उतनी बढ़ती जाती है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे।
ये दूसरा कर्म है। तीसरा कारण क्या है कि हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़े दुश्मन के साथ रह रहे हैं, जिसे हम तथाकथित मित्र समझ रहे हैं, वो कौन है, खुद का मन। क्योंकि हमारा मन ही सबसे बड़ा सीआईडी एजेंट है माया का, मन मोजी माया का भोजी। तो ऐसे दुश्मन के साथ हम रह रहे और उसको दोस्त समझकर उसके साथ हम रह रहे, उसको बादाम पिस्ता खिला रहे, जो चाहिए वो दे रहे, इसलिए कभी कभी समय निकालकर हमें सोचना चाहिए, मन को प्रश्न करना चाहिए कि हे मन, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया करोड़ों जन्म से, और तूने मुझे क्या दिया? कभी प्रश्न किया हमने? नहीं। ओ रे मन, भालो नहीं लागे संसार। तो प्रश्न पूछना चाहिए मन को कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं खिलाया? पास्ता खिलाया, और क्या क्या नहीं खिलाया, और क्या होता है, पिज्जा खिलाया, सब कुछ खिलाया, लेकिन तूने क्या खिलाया? विष्ठा खिलाया मेरे को, और कुछ नहीं खिलाया। तो ये प्रश्न मन को करना चाहिए कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने मेरे लिए क्या किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शेनम, वही आहार निद्रा भय और मैथुन मुझे पूरा पागल कर दिया है। क्योंकि पागल अपनी वही वही चीज बार बार करता है। जैसे एक बार हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू पागलखाने में गए थे, समस्या नहीं थी, देखने के लिए गए थे। विजिट के लिए, 15 अगस्त का दिन था तो चले गए थे वो उनके बुलाने पर। उनको लगा कि ये फिट आदमी है हमारा अध्यक्ष बनने के लिए। चले गए बेचारे, जैसे अंदर गए तो 2-3-4 लोग उनके पेट टूट पड़े, कोई उनकी टोपी उड़ा रहा है, कोई उनका कोट खींच रहा है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई पीछे से उनके पैंट खींच रहा है। तो 2-3 लोगों ने ऐसे किया और जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे मैं पंत प्रधान हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, पंडित नेहरू। वो कहने लगे हम भी ऐसे कहते जब पहली बार आए। इस प्रकार है भौतिक जगत का है पागल खाना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत से उसे टक्कर क्या कहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मेंट फॉर मेंटल मैन। क्योंकि वही चीज कर रहे हैं हम, हमारे दादा ने वही किया, हमारे पिता ने वही किया, हमारे परदादा ने वही किया, एवं परंपरा प्राप्तम, इस परंपरा में हम क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, और उसी कार्यों में लगे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो वही चीज बार बार जो करता है उसको क्या कहते हैं, पागल। तो ये पागलपन क्यों है, क्योंकि हमने सबसे बड़े दुश्मन पे भरोसा रख के उससे दोस्ती की है, वो है हमारा खुद का मन। तो ऐसे मन के साथ अगर रहेंगे तो बहुत ही हमें क्या होना, ध्यानपूर्वक होना चाहिए। क्योंकि मन को एक उपमा दी गई, उपमा ही नहीं, खाने का उपमा नहीं, उपीट नहीं, उपमा का मतलब है, उसका मतलब यह है, और एक मतलब क्या है, मन का वेशा। भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभदेव बता रहे हैं 100 पुत्रों को, वो वह कह रहे हैं कि मन किसके समान है, एक वेशा के समान है। कोई वेशा पे भरोसा रखता है नहीं, कितने भी सुंदर हो उसको अपनी पत्नी नहीं मान सकता, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। तो वेशा का कार्य है उस व्यक्ति को उससे ही चुरा कर दूर लेके जाना। तो किस प्रकार करती है, अलग अलग वस्त्र पहनकर उसको बहकाती है, उसी प्रकार अलग अलग इच्छा प्रकट करके मन उस जीवात्मा को बहकाता है, उस बुद्धि को बहकाता है, और उसको ही उसे दूर ले जाता है भगवान से। तो उसके वेशा के अनेक प्रियकर होते हैं, अनेक चाहते हुए, तो उस प्रकार इस मन रूपी जो वेशा है उसके कितने प्रियकर है, कम से कम 6, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। तो सोचिए उस पति की अवस्था क्या होगी, इसकी पत्नी क्या है, वेश्या के समान है, चरित्रहीन स्त्री के समान है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, नौकरी धंधा छोड़कर सिक्योरिटी का काम करना पड़ेगा अपने घर में। पत्नी कहां जाती है, किससे बात करती है, किससे फोन करती है, किससे मिलती है, 24 घंटा उसको ड्यूटी मिलेगी सिक्योरिटी इंचार्ज। तो इस प्रकार सारी जिंदगी वो परेशान रहेगा। तो अगर वेश्या है पत्नी तो उसको क्या कर सकते हैं, हम तलाक दे सकते हैं। 3 बार बोलना है मंत्र, तलाक तलाक तलाक, हो गया। लेकिन मन को तलाक देना असंभव है, बोलने से तलाक तलाक वो फटका देगा हमको हर एक। क्योंकि मन को हम तलाक नहीं दे सकते, उसके साथ ही रहना है। जो शत्रु है उसको मित्र बनाना है। कभी संभव है जब ध्यान पूर्वक जब करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उसी मन को और एक उपमा दी गई है उसी भागवत में पांचवें स्कंद में। बहुत अच्छी शिक्षा है वृषभ दी, पढ़िए जरूर पांचवें स्कंद में। पूरा मन का उन्होंने पोस्टमार्टम किया है किस प्रकार मन कार्य करता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिकारी बहुत ही जहरीले कोबरा को सांप को पकड़ता है और पिंजरे में रखता है या टोकरी में रखता है तो उसके बाजू में जाकर सोता नहीं, वो 24 घंटा उस पर नजर रखता है। भले वो उसको पकड़ा है उसने अंदर डाला है फिर भी उसके दांत अभी तक निकाले नहीं जहरीले, तो कभी भी वो बाहर निकलकर उस पर हमला कर सकता है या भाग जा सकता है। या कोई खौफनाक जानवर है उसको पकड़ के पिंजरे में डाला है, जैसे बहुत ही खौफनाक जो शेर है उसको पकड़ा है तो शिकारी उसके बाजू में जाकर आराम से खर्राटे नहीं मारता, उस पर पूरी तरह ध्यान रखे होते हैं। या और एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार घर में एक जगह एक बिल में सांप घुस गया है, जहां आप टीवी देखते बैठे हैं तो सोचते नहीं कि चला चलो जाने दो उसको, उसका उसका काम करने दो, मेरा मैं काम करता हूं टीवी देखता हूं। इतने आराम से आप टीवी नहीं देख सकते, बार बार स्क्रीन पे वही आएगा आपके। भले आराम से आप टीवी देख रहे हैं, सांप भी पीछे से आएगा और आराम से कोच में बैठेगा, वो भी देखता रहेगा टीवी नहीं आपको। तो कितने सावधान होते हैं हम एक साधारण सर्प, एक सर्प अगर अंदर गया तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या क्या नहीं करते, सपेरे को बुलाते हैं, अनेक अनेक उपाय करते हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती, फिर भी शांति से सो नहीं सकते, वो घर छोड़कर हमें दूसरे घर में सोने के लिए जाते हैं। तो सोचिए हमारे हृदय के अंदर जो सबसे बड़ा बिल है उसके अंदर 6 सांप ऑलरेडी जन्म जन्मांतर से वास कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और करोड़ों जन्मों से 20 बाहर फेंक रहे हैं, फिर भी हम सतर्क नहीं है, आराम से चल रहा है, हाथ में माला है दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, शो देख रहे हैं। लेकिन हमारा अंदर जो शो चल रहा है वो हम देख नहीं पा रहे। इसलिए हमें क्या करना है कि ध्यान पूर्वक जप करना है, क्योंकि आंतरिक संतुष्टि इनर फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं वो तभी मिलेगी जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और जो आंतरिक संतुष्टि है वही हमें ताकत देगी माया से युद्ध करने के लिए। बाहर की जो शक्ति है मसल्स है जो भी हमने कमाए शरीर के बल पर वो हमें मदद नहीं कर सकती माया के साथ युद्ध करने के लिए। वो किसके समान है, एक फुगे के, एक फुगा को कहते बब्बर अकबर गुब्बारा बबल बबल फुगे के समान, और माया के लिए फुगे के समान, एक पिन भी लगाएगी तो फूट जाएगा वो जितना फूला है, लेकिन जो आंतरिक शक्ति है उसको हाथ नहीं ले सकती माया, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति है और वही काम आएगी माया के साथ युद्ध करने के लिए मृत्यु के समय। इसलिए जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतनी हमारी आंतरिक संतुष्टि शक्ति बढ़ेगी, इनर फुलफिलमेंट। जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतने जल्दी उतने आतुर होंगे भगवान हमें वापस लेने के लिए, हमारा हृदय साफ करने के लिए। इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। और अंत में हम देखेंगे कि क्या ध्यान रखना है हमें जप करने से पहले, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कई चीजें जो हमें ध्यान में रखना है जप करने से पहले। तो जब जो जब टाइम है वो प्लानिंग टाइम नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जब जो टाइम है वो प्लानिंग टाइम नहीं, योजना का समय नहीं है। कई लोग नोटबुक पेन लेके बैठते हैं क्योंकि सबसे अच्छी सबसे बढ़िया आइडियाज प्लान्स उसी समय थे। सारे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं 2 घंटे में हम, यही योजनाएं आपको आएगी सबसे बड़ी सबसे अच्छी योजनाएं कि कैसे कोल्हापुर को सारे कोल्हापुर को मैं बदल सकता हूं, कैसे सारी दुनिया को बदल सकता हूं, ये सब आइडिया सबसे अच्छा आइडिया जपा के समाएंगे। तो कई लोग पेन और नोटबुक लेके बैठे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वागले की दुनिया हो जाएगी। धीरे धीरे भूल जाएगी कि हमको जप करना है, साइड में रख के हम बीड बैग सिर्फ लिखते ही बैठेंगे, तो ये माया का क्या है, सबसे बड़ा जाल है। अगर सचमुच वो अच्छा आइडिया है तो भगवान हमें फिर से याद दिलाएंगे, उनके सेवा के लिए है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, सचमुच है तो भगवान फिर से हमें याद दिलाएंगे कि उनका कार्य वो फिर से याद दिलाना। क्या श्लोक है? मत्त स्मृति ज्ञानम अपौनम च, बहुत ही जरूरी है, जिसपे भक्ति का प्रचार बढ़ सकता है, या भगवान जब भी समझेंगे तब वापस वो देंगे, उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए उस समय हमें सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, इट्स नॉट प्लानिंग टाइम, इट्स प्लीडिंग टाइम, प्रेयर टाइम। उस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भीख मांगना चाहिए हमें। सो जपा टाइम इज नॉट ड्रीमिंग टाइम, ये हमें क्या है, भीख टाइम मांगने का समय, क्योंकि हम भिखारी है, बेघर है। बेघर क्यों है? क्योंकि हम बेघर हो गए। बेघर क्यों है? बेघर हो गए, आध्यात्मिक जगत छोड़ के भीख मांग रहे इधर हम, इसलिए बेघर है हम, क्योंकि हम बेघर हो गए। अगर माया के साथ मन के साथ युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध से पहले ही हम हार चुके हैं। पहले से तलवार बीट बैग निकाल के रखा है तो क्या है, किसके समान है? इफ यू आर नॉट फाइटिंग यू आर लूजिंग। अपने तलवार ही नीचे छोड़ दिए, रख दिए, तो युद्ध कैसा होगा? इसलिए हमेशा तलवार लेके, ज्ञान की तलवार लेके हमें हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार हो। इसलिए मन के द्वारा हमें क्या करना है, पूरी तरह से ध्यान पूर्वक जप करना है। अगर हम मन को घूमने देंगे दो घंटा तो क्या करेगा, वो वर्ल्ड सफारी करके देगा हमको, वर्ल्ड सफारी में 84 लाख घुमाएगा। अगर दो घंटे अलाउ करेंगे उसको घूमने के लिए जपा के समय, तो ये निश्चित रूप से आपको 84 लाख में घुमाते रहेगा। दो घंटे अगर उसको अलाउ करेंगे, उसको छोड़ देंगे जपा के समय, जहां चाहे वहां जाओ, तो क्या करेगा, दो घंटे के बाद आपको निश्चित रूप से गारंटी से आपको 84 लाख घुमाएगा। इसलिए इफ यू लेट योर माइंड वंडर, यू विल हैव टू वंडर इन 84 लाख स्पीसीज। इसमें कोई वंडर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को भटकने नहीं देना है, क्योंकि भटकता मन क्या है, एक छाते के समान है, जो हरिनाम की वर्षा हो रही है उसको रोक रहा है। भटकता मन किसके समान है, एक छाते के समान है, लेकिन वो हरिनाम की जो वर्षा हो रही है गुरु के माध्यम से, कृष्ण की कृपा से, उस हरिनाम रूपी वर्षा को ही रोक रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को याद नहीं करेंगे ध्यान पूर्वक मुक्ति के समय, तो क्या होगा, इफ यू डोंट रिमेंबर देन वी हैव टू बिकम रिमेंबर इन 84 लाख स्पीसीज। रिमेंबर का मतलब है क्या है, याद करना, और रिमेंबर का दूसरा अर्थ क्या है, फिर से मेंबर बनना पड़ेगा, रिमेंबर 84 लाख यूनि में। इसलिए रिमेंबर नहीं बनो, भगवान को रिमेंबर करो। अगर ध्यान पूर्वक जब से, अगर ध्यान में लगेगा कि ध्यान पूर्वक जब से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है वो जो करनी है जपा के समय, तो भगवान वैसा ज्ञान देंगे आपको, वैसा समय देंगे, वैसी स्थिति निर्माण करेंगे, और जब से आपको बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार हम बार बार उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार मन हमको उल्लू बनाता है, जैसे हम ऑल्टर के सामने बैठे हैं, फोटो के सामने बैठे हैं, और माता जी है कोई, वो जप करे तो वो देखते हैं कि राधा रानी की साड़ी बहुत अच्छी है, उसकी बॉर्डर कितनी बढ़िया है, कितनी डिजाइन है, कितना अच्छा उसमें एम्ब्रॉयडरी, क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी है, वो सोचते हैं कि ऐसी साड़ी अगर मुझे मिले तो मैं भी वैसी दिखूंगी। तो साड़ी बनाने के लिए पति को कैसा उल्लू बनाना है, लास्ट टाइम कैसा उल्लू बनाया था, कैसे उल्लू बनाकर उसे बंबई लेके गई थी, और कौन से ट्रेन से गई थी, और ट्रेन का टिकट का नंबर याद आता है, बाद में ट्रेन से उतरने के बाद कौन सा बस पकड़ा था, वो कंडक्टर का बैच नंबर याद आता है हमें, बस का नंबर याद आता है, कौन से दुकान में उतरे, उसके बाद चौपाटी कैसे गए, भेल कैसे खाई हमने, और उसके पैसे महीने दिए, अभी तक वो पैसे पति ने मेरे को दिए नहीं, उसका बिल कितना हुआ था, बिल का नंबर क्या है। तो दो घंटे में चलता रहेगा बंबई यात्रा साड़ी जैसे दुशासन खींच रहे थे वैसे हम खींचते रहेंगे दो घंटे के हाँ खींचो हरे कृष्णा कहना हरे कृष्ण नहीं खींचो हरे कृष्ण चलता रहेगा हमारे और साड़ी के इस प्राप्त करने में जो है जो भी प्लानिंग वो चलता रहेगा और हम भूल जाएंगे कि हमको जपा करना है। तो इस प्रकार भगवान के सामने भी बैठे हैं तो मन इस प्रकार हमें उल्लू बनाता है। अगर कोई ब्रह्मचारी बैठा है जप करने के लिए तो सोचेगा कि कितना अच्छा धोती है, लेकिन दुर्भाग्य हमको अलाउ नहीं है ऐसा बॉर्डर का धोती पहनना तो उसको याद रखे अरे भूल गया मैं कल रात को धोती धोने के लिए बकेट में रखा था, तो जपा छोड़ के धोती धोने के लिए चला जाता है तो इस प्रकार मन इतना हमें बेवकूफ बनाता है, इतना उल्लू बनाता है कि हम पता भी नहीं चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुझे कार्य करना है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी तीव्र इच्छा है जब छोड़ के बाकी चीज करने की। Therefore, let everything wait. Let everything else wait. सब कुछ रुक सकता है, संसार रुक सकता है, ब्रह्मांड रुक सकता है अगर आप चाहेंगे तो। सारे संसार में आग भी लगी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जब छोड़ के जाएंगे तो आपके जीवन में आग लग जाएगी। इसलिए जो दो घंटे दिए है उसी जगह पे बैठ के उसी समय जप करना है। उसी जगह क्यों? उसी वक्त क्यों? उसी समय बैठेंगे, उसी जगह बैठेंगे तो हमें मन की सहायता मिलेगी, क्योंकि हर रोज उधर बैठने से मन वहां पे कंफर्टेबल है, बहुत ही शांति से करता। हर रोज अलग अलग जगह पे बैठेंगे तो क्या होगा? मन अलग अलग जगह घूमता रहेगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। इसलिए उसी जगह बैठ के उसी समय बैठकर, और भगवान को भी आसानी होगी कि उसी समय मुझे जाना है, उसी जगह जाना है। जैसे रेडियो में अनाउंस करते ना साप्ताहिक में, फिर से मिलते हैं इसी जगह इसी वक्त अगले हफ्ते बिना का गीत माला रेडियो मिर्ची। उसी प्रकार सोचिए आपका जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, हर हफ्ते हर जगह अलग अलग जगह करते रहेंगे, अलग अलग समय, आज 4 बजे, अगले हफ्ते सुबह 2 बजे, और किधर कोल्हापुर के उस कॉर्नर में, अगले हफ्ते अलग जगह, तो कौन आएगा ऐसे प्रोग्राम में? तो भगवान भी कैसे आएंगे? अलग अलग जगह बैठेंगे, अलग अलग समय बैठेंगे, भगवान बिल्डर हो जाएंगे, अभी ये कहां बैठा है, किस समय के मुझे बुलाएगा, हाँ तकलीफ में रहेंगे भगवान भी। इसलिए एक जगह बैठकर उसी समय उसी जगह, ताकि मन हमारा हमें साथ दे, बहुत जल्दी साथ देता है, क्योंकि उसी एनवायरमेंट में हम हर रोज बैठते हैं, तो इसलिए हमें मन बहुत जल्दी साथ दे सकता है। इसलिए अगर ध्यान पूर्वक जप करने से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है आपको करनी है तो परमात्मा के रूप में भगवान वो ज्ञान देंगे और वो सुविधा भी देंगे आपको जप छोड़कर वो चीज करने के लिए। लेकिन आपकी तीव्र इच्छा है मुझे जप ही करना है, तो परमात्मा आपको वही रुकाएंगे, भले सारे संसार को आग लगे कुछ भी हो, लेकिन आपकी तीव्र इच्छा है तो वहां पर बैठ के आप जप कर सकते हैं। तो अंत में सब आपकी तीव्र इच्छा पे है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मन को जूते से नहीं मारेंगे दो घंटा ध्यान पूर्वक जप करके, तो क्या करेगा मन 22 घंटा जूते से मारता रहेगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2 घंटे नहीं मारेंगे तो वो 22 घंटा मारेगा आपको जूते से, उसी जूते से। इसलिए बहुत जरूरी है कि मन को 2 घंटे ध्यान पूर्वक जप करके उसको शांत करना है। तो चॉइस हमारी है कि जूते खाना है या जूते देना है मन को, और चॉइस क्या है, यही है राइट चॉइस बेबी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। तो हरे जो ध्यान पूर्वक जप किया हरे कृष्णा महामंत्र है वो क्या है, अनमोल पूंजी है हर एक मंत्र, क्योंकि उसमें ताकत है आपको भगवत धाम लेके जाने की। कोई भी मंत्र, कोई भी अक्षर, कोई भी सिलेबल, कोई भी मोती, कोई भी माला सक्षम है आपको भगवत धाम जाने ले जाने के लिए। इस प्रकार अजामी ने जो पहली बार बोला नारा है वही काफी था उसको भगवत धाम ले जाने के लिए। इसलिए हमें हर एक मोती, हर एक माला, हर एक शब्द, हर एक मंत्र ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कौन सा मंत्र, कौन सा शब्द, कौन सा माला, कौन सा महामंत्र हमें भगवत धाम लेके जाने वाला है। इसलिए हर एक हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक, जिस प्रकार पिक्चर में होता है एक रिवॉल्वर होता है और उसमें एक ही गोली होती है और वो घुमाते रहता है कितनी गोली है गोली एक ही है लेकिन कहां है पता नहीं। उस प्रकार कौन सा महामंत्र है जो हमें भगवत धाम ले जाने वाला मालूम नहीं, इसलिए हरेक मंत्र में ध्यान करना है, कोई चांस नहीं देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
क्योंकि यही अनमोल पूंजी है, यही रियल इन्वेस्टमेंट है। बाकी संसार हमें जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा है मुझ में इन्वेस्ट करो मुझ में इन्वेस्ट करो, परिवार कह रहा है, मित्र कह रहे हैं, समाज कह रहा है, देश कह रहा है कि मुझ में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन किस प्रकार है उस कंपनी के समान जो एडवर्टाइज करे कि हम 100% गारंटी देते कि हमारे कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि हर एक अंत में नष्ट होने वाला ही है, भले वो देश हो समाज हो परिवार हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करके क्या मिलेगा आपको अंत में, बड़ा झीरो। द नेम यू कैन ट्रस्ट इज होली नेम। इसलिए हमें ऐसे बैंक में पूंजी करना है, यहां तक कि बाइबल में, बाइबल नाम कैसे पड़ा क्योंकि यीशु क्रिस्त भी जगन्नाथपुरी आते हैं, उनके बलदेव के बल से उन्होंने जो लिखा उसको बाइबल कहते हैं। बाइबल उन्होंने जो लिखा उनका साक्षात्कार वो है बाइबल। बलदेव ही शक्ति दे सकते हमको। गुरु तत्व है वो, परम गुरु है। तो ऐसे यीशु क्रिस्त भी लिखते हैं अपने बाइबल में कि अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है इस भौतिक जगत में तो भगवान के नाम के अकाउंट में, भगवान की जो बैंक है हरिनाम बैंक, उसमें कीजिए ताकि वही इन्वेस्टमेंट आपको मृत्यु के समय काम आएगा। लेकिन माया क्या कहती है, ये इन्वेस्टमेंट मत करो, जितने में जब करके बोलते कि क्या कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, अभी कुछ मिल रहा है तुमको नहीं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है ये सिर्फ हम जमा कर सकते हैं, विड्रॉवल अलाउ नहीं है, विड्रॉवल सिर्फ मृत्यु के समय अलाउ है इस बैंक में। इसलिए हमें कभी कभी माया उल्लू बनाती है कि तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी फायदा हमें मृत्यु के समय मिलने वाला है, क्योंकि हर एक जो महामंत्र हम ध्यानपूर्वक बोल रहे हैं वो पूंजी जो है बैंक में जमा कर रहे हैं वही काम को आने वाली है। जिस प्रकार तुकाराम जी करते धन मिलवोनी कोटी सवे नए लंगोटी, आपका लंगोट भी आपके साथ नहीं आने वाला है, जो पत्नी है घर के दहलीज तक आएगी, उंबरठा तक, तथाकथित मित्र है परिवार है वो स्मशान तक, जन पड़वर मंतिल हाय 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 हाय, तुम चले जाओ अभी। हाय हाय नहीं हाय हाय करेंगे। इसलिए अंत में जो काम आने वाला वो क्या है, भगवान का नाम ही, और कोई रास्ता नहीं, आखिरी रास्ता है हरे कृष्णा हरे इसलिए जब का समय है कृष्ण भावनावित होने के लिए है, कृष्ण भावना भावित, बी कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट प्रॉब्लम कॉन्शियस। जब के समय चिंता में, चिंता से भरे हुए जप नहीं करना है, प्रॉब्लम कॉन्शियस कहते हैं उसको। हमारा उद्देश्य क्या है, कृष्णा कॉन्शियस होना है, प्रॉब्लम कॉन्शियस नहीं है। समस्या प्रॉब्लम तो रहेगी, कब तक रहेगी, भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर कहते हैं जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेते, उसके बावजूद भी बाहर निकलने के बाद समस्या रहेगी, तो समस्या का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है। यही हरे कृष्ण महामंत्र सारे समस्याओं से हमें बाहर निकल सकता है, भले भौतिक हो आध्यात्मिक हो शरीर की हो समाज की हो देश की हो, कोई भी समस्या लीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका जवाब नहीं, क्योंकि लाजवाब हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
और जैसे बता हमने हरि नाम की शक्ति क्या है, कैसे भगवान से भी ज्यादा शक्ति चले है भगवान का नाम, क्योंकि जैसे हमने बताया भौतिक इच्छा कभी काल के रूप में नष्ट नहीं होती, मृत्यु के बाद भी वो पीछा करती है उस भटकती आत्मा की, सूक्ष्म शरीर के रूप में, मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है उसमें वो वास करती है, और जैसे स्थूल शरीर मिलता है फिर से वो प्रकट होती है इच्छाएं। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है उसको हम निरागस कहते हैं, लेकिन वो निरागस नहीं है। देवामृत माल जी एक लेक्चर में बताते हैं कि वो इनोसेंट नहीं है, सिर्फ वो राह देख रहा है कि कभी मेरा शरीर विकसित हो तो अपने आप वो काम वासना जागृत होती है। वही लड़की जिसके साथ वो खेल रहा था वही उसके प्रति आकर्षण होता है उसका। उस प्रकार सिर्फ शरीर प्रकट होने की वो राह देख रहा है, उस प्रकार भौतिक इच्छा हमेशा रहेगी मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करेगी। इसलिए काल के रूप में भगवान इस भौतिक इच्छा को नष्ट नहीं करते, क्योंकि हर एक जीव को स्वतंत्र दिया है। लेकिन हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि वो एक क्षण में भी करोड़ों जन्मों की इच्छाएं एक साथ जलाकर खाक कर देता है, इतनी शक्ति है। इसलिए हर एक मंत्र में ध्यान पूर्वक बोलना है, हरे कृष्णा इसलिए ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र जप करके सारे ब्रह्मांड के सारे संसार की सबसे बड़ी जो ताकत है उसका एहसास कर सकते हैं। चांट हरे कृष्ण अटेंटिवली एंड एक्सपीरियंस द सुप्रीम पावर बियॉन्ड टाइम इन दिस क्रिएशन। बहुत ही अच्छा बताए इधर कि चांट हरे कृष्ण अटेंटिवली एंड एक्सपीरियंस द सुप्रीम पावर ऑफ बियॉन्ड टाइम इन द होल क्रिएशन। और अंत में देखेंगे आखिरी पॉइंट कि क्या फायदा होगा हमें, इतना बोल रहे ध्यान पूर्वक क्या है? इससे मिलेगा क्या हमें? तीन दिन तो हमारा वेस्ट हो गया, अब क्या मिलने वाला क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिलने वाली है। क्या होता है ध्यान पूर्वक जब करेंगे तो तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवद्गीता के 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में बताते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि, मैं खुद इस अंधेरे को नष्ट करता हूं। जो अज्ञान का अंधेरा है आपके हृदय में करोड़ों जन्मों से, जब ध्यान पूर्वक जप करते हो तो खुद मैं परमात्मा के रूप में आकर वहां पे लाइट लगाता हूं, दिया लगाता हूं, और क्या करता हूं आपको दिखाता हूं कि आपके हृदय में कितना बड़ा कचरा कुंडी है। क्योंकि हमारा हृदय बद्ध अवस्था में 99% कचरा कुंडी है, सब कचरा भरा हुआ है अनर्थों का, और 1% किसी एक कोने में हमारे भगवान के प्रति भावना है, कृष्ण भावना, तो उसको दिखाते हैं। और खुद उसके बाद क्या करते हैं, भगवान अपने हाथ में झाड़ू लेकर उस बद्ध जीवात्मा की पुकार सुनकर, ध्यान पूर्वक जप सुनकर, खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर उसका हृदय साफ करना शुरू करते हैं। तो इतने परम दयालु है सुरधम योर एवर वेलविशर भगवान, कि खुद उस बद्ध जीवात्मा को मदद करना शुरू करते हैं उस गंदगी को साफ करने के लिए। इसलिए अपने बलबूते पे अपने शक्ति से हम अपने हृदय को मार्जन नहीं कर सकते, हमारी कोशिश सिर्फ होनी चाहिए ध्यान पूर्वक जप करना, उसके बाद भगवान देख लेंगे कैसे करना है कभी करना है। लेकिन भौतिक आसक्ति कारण क्या होता है, हम उस परम मित्र को सबसे बड़े हितचिंतक को बुलाते हैं, साफ करना आ जाओ हमारा कमरा हमारा लॉकर, लेकिन जब आता है तो पूछता है ये फेंकना है क्या? नहीं नहीं ये तो मेरे माँ ने दिया था, कैसे फेंक सकता हूं, उसको गंदगी आ रही है बदबू आ रही है। फिर बोलता है नहीं ये जो आम है 10 साल पहले मेरी माँ ने दिया था, मैं कैसे फेंक सकता हूं इसको, आम है कितने दिन में सड़ेगा वो, 3 दिन में, ये आम बात है समझने की। लेकिन उस आम को फेंकने के लिए तैयार नहीं जिससे कीड़े बाहर निकल रहे हैं, हाँ जिसकी गुठली सड़कर ये हो गई है, ऐसे आम की गुठली लेकर हम क्या बैठे हैं और बोलते कि मेरे माँ ने दिया था मेरे को 10 साल पहले, कैसे फेंक सकता हूं, हाँ ये जो बर्तन है हाँ ये जो ग्लास है इसको फेंकना है, सब टूट गए फूट गए, नहीं नहीं ये मेरे पिता ने दिया था मेरे को गिफ्ट जब मैं पहले आया था 10वीं कक्षा में। तो हर एक चीज पूछता है मित्र, ये फेंकना नहीं होता है, हर एक चीज के पीछे उसकी आसक्ति है, किसी ने किसी उसको दिया है तो आसक्ति के कारण वो फेंकने के लिए तैयार नहीं। तब ऐसे वक्त वो मित्र कहता है जब आप तय करेंगे डिसाइड करेंगे फेंकना है तब मुझे बुला लेना तब मैं आऊंगा। इस प्रकार भगवान बार बार आते हैं हमें मदद करने, लेकिन हमारी विषय आसक्ति के कारण बार बार हम क्या करते हैं भगवान को वापिस भेजते हैं, इसलिए हमारा हृदय करोड़ों जन्मों से साफ नहीं हो रहा है। जब हम कहेंगे अभी मैं रेडी हूं मैं तैयार हूं हर एक चीज फेंकने के लिए, हर एक अनर्थ को साफ करने के लिए, मेरा हृदय का मार्जन करना है, जैसे मंदिर मार्जन किया था चैतन्य महाप्रभु, हर एक छोटी छोटी चीज उन्होंने बाहर निकालकर फेंक दी। उसी प्रकार जब हम तैयार होंगे तब भगवान वास्तव में हमें मदद करेंगे और तभी हमारी भक्ति की शुरुआत होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान पूर्वक जप करना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इफ यू इंप्रूव योर चैंटिंग, दैट इज चैंटिंग अटेंटिवली, ऑल अदर एंग्जाइटीज विल बी क्लियर्ड अप। जो भी समस्या है, जो भी चिंता है, अपने आप भगवान का नाम इसकी देखभाल करेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इफ यू इंप्रूव योर चैंटिंग, इंप्रूव दैट इज चैंटिंग अटेंटिवली, ऑल अदर एंग्जाइटीज विल बी क्लियर्ड अप। अ लॉट कैन बी अकम्प्लिश्ड सिंपली बाय अप्रोचिंग चैंटिंग सिंसियरली एंड अटेंटिवली। जो कुछ भी आवश्यक है, जो कुछ भी जरूरी है, वो अपने आप हमें प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं मुर्गारी, मुर्गारी का नाम मुर्गा मत क्यों था, क्यों मुर्गा मारी करता था, मुर्गों को पशुओं को आधा मार के छोड़ता था, इसलिए उसका नाम मुर्गा मारी था। तो जब नारद जी मिले तो उनको देख के बोला कि उनको आधा क्यों मार रहा है, उनको पूरा मार दो आप। तो साधु का काम क्या होता है, विषयाशक्ति को काटना। तो ये प्रश्न पड़ता है कि साधु काटते क्यों है हाथ में तलवार लेके, वो उस गांठ को छोड़ सकते हैं हृदय ग्रंथि को। लेकिन तीन कारण बताए, पहला कारण है साधु के पास इतना समय नहीं, दूसरा है करोड़ों करोड़ जन्म की ये ग्रंथि है, उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, उसको काटना ही पड़ता है, तीसरा कारण है अगर छोड़ भी देंगे तो वापिस साधु निकलने के बाद वापिस बांध देगा वो मूर्ख व्यक्ति उस ग्रंथि को। इसलिए ज्ञान की तलवार से, साधु का मतलब क्या है, टू कट, इस प्रकार उन्होंने उसकी आसक्ति को काट डाला। उसको पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा कि आप इसको आधा क्यों मार रहे, इसको पूरा क्यों नहीं मारते आप, तब उनके शरण में गया। तो पहला उनको आज्ञा क्या मिला, गुरु की आज्ञा कि आपके हाथ में जो धनुष बाण है उसको फेंक दो, उसको तोड़ दो। तो उसका धनुष बाण क्या था, उसके अहंकार का प्रतीक, इसके कारण मैं खुद का परिवार संभाल रहा हूं, रोजी रोटी मिल रही है, यही मेरा जीवन का साधन है, तो उसको पहले तोड़ दिया अहंकार को। उसके बाद क्या कहा कि आप भगवान का नाम लो, तो वो कहने लगे कि भगवान का नाम लेने से थोड़े खाने को मिलेगा मुझे, तो बोले मुझ पर विश्वास रखो कि जितना आवश्यक है आपको भगवान देंगे, सिर्फ भगवान के नाम पे भरोसा रखो। तो इस प्रकार वो भगवान का नाम लेने लगे, तो सारे गांव में चर्चा फैल गई कि मृगारी क्या बन गया, जो हंटर था वो चैंटर बन गया, हरे कृष्ण चैंटर है ना, चैंटर बन गया। तो देखने के लिए लोग आ गए कितना बदलाव कैसे होगा। और जब साधु के पास आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत अनाज लेके आते हैं, फल फूल लेके आते हैं मिलने के लिए। जब भी भगवान के मंदिर जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, तो क्या लेके आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं करें हम। जब भी साधु के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, कि ये प्रेम का प्रतीक है, आदान प्रदान है। तो इस प्रकार लोग आने लगे, बहुत सारी चीजें लेके, और इतना उसके पास अनाज बढ़ने लगा, इतना फल फल, कि उसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट उसने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू कर दिया, खुद भी खा रहा था और दूसरों को वितरण कर रहा था। तो भगवान के नाम की महिमा है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, जितना लिखा है उतना मिलके ही रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते कि मनुष्य सबसे लोभी है, इसलिए भगवान पे विश्वास नहीं। हाथी एक टन खाता है लेकिन उसको विश्वास है जिसने पैदा किया है वो मेरी देखभाल करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर पूछते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं और भगवान को तकलीफ देते हैं, आज खाने को मिलेगा क्या, कपड़ा पहनने को मिलेगा। ये किस प्रकार है, सुबह सुबह उठकर आप अपने पिता का पैंट पकड़ दोते, पिता पिताजी आज खाने को मिलेगा, कपड़ा पहनने को मिलेगा। और शाम को जब आते फिर से पूछते, प्रभु जी पिताजी फिर से कल मिलेगा क्या, खाने को कपड़ा मिलेगा, तो अपने सिर को हाथ लगा के बोला किस मूर्त पे इसको पैदा किया मैंने। तो वही अवस्था है हमारी, बार बार जाके भगवान को परेशान कर रहे हैं। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ लिख के रखा है, इसलिए सुख और दुख के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। सुख और दुख मिलके ही रहेगा, कितनी भी कोशिश की है 33 करोड़ देवी देवता भी आपका सुख छीन नहीं सकते अगर कोशिश करेंगे एक साथ आकर के भी, कोई भी आपका सुख छीन नहीं सकता। कितना प्रारब्ध में उतना मिलेगा और दुख भी उसी प्रकार, जहां भी छुपे हो आपको ढूंढ के निकलेगा। जैसे पद्म पुराण में उदाहरण जाता है कि जैसे गाय के बछड़े को आप छोड़ दो हजारों करोड़ों गाय के झुंड में, वो गाय का बछड़ा बराबर ढूंढ के निकलेगा, किसको? अपनी मां को। उस प्रकार ये दुख रूपी बछड़ा आपको ढूंढ के निकलेगा जहां भी छुपे हो। इसलिए मनुष्य जीवन चिंता के लिए नहीं, चिंतन के लिए। चिंता और चिंता में अंतर क्या है? एक अनुस्वर का। हाँ, चिंता है सारी जिंदगी भर चलाती है मनुष्य को, जिंदा रहकर भी उसको, और चिता है मृत्यु के बाद मुर्दा को जलती है। इसलिए चिंतन करने के लिए मनुष्य जीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जितना ध्यान पूर्व करेंगे उतनी चिंता कम हो जाएगी, उतना चिंतन बढ़ते जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा भगवान के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम। इसलिए आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि जो भी मैं बोल रहा हूं आप प्रार्थना कीजिए कि मैं मेरे जीवन में उतारने की कोशिश करूं आपकी कृपा से। इसलिए जहां भी जा रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि भक्तों की कृपा मुझे मिले और ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से मैं नाम ले सकूं ध्यानपूर्वक। तो आपसे और एक निवेदन है कि कृपा करके जितना हो सके एकत्रित आके भगवान का नाम लीजिए। हमने सुबह देखा कोई नहीं था, आज मुझे लगा कि आज हॉल फुल रहेगा, जब बैठने के लिए जगह नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सुनने के बाद भी हम क्या करें? वही दसवा प्रत करें। इतने आगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए तो वो किसके समान है? पालते घड़े पे पानी डालने के समान है। 3 दिन सुना लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नड़ी फुंकीले सुना रे इकड़ून तिकड़े गेरे वारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुना है वो प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन में हरिनाम के लिए छुट्टी नहीं कुछ। हाँ, देर इज नो हॉलीडे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओनली होलीडे। इसलिए जितना हो सके एकत्रता के जप करे, कम से कम हफ्ते में एक दिन तपस्या समझ कर। ये अगर वचन देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी कोल्हापुर यात्रा सफल हो गई। जहां भी मैं जाता हूं एक कोर्स करने के बाद यही उनसे मांगता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और आप एकत्रता के जप कीजिए, क्योंकि कलयुग किसके लिए है? संकीर्तन। संकीर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ संकी बन जाएंगे, कीर्तन नहीं होगा। संकी मीन्स प्रमाद, मैड, प्रचुर मात्रा में मैड, संकी बोलते उसको। पागल हो जाएंगे हम अकेले, क्योंकि एकांत के हरिहर भक्ति उत्पात भी केवलम। सिर्फ उत्पात मचाएंगे भक्तों के जीवन में, हमारे जीवन में, संस्था के जीवन में। इसलिए कृपा करके जितना आप एकत्रित आएंगे उतने भगवान खुश होंगे, उतने जल्दी मंदिर बनेगा। मंदिर ईंटों से बालू से नहीं बनेगा। ये जो मंदिर बनने वाला है, जब भगवान देंगे सिंसियरली भक्त लोग एकत्र कर मेरा गुणगान कर रहे हैं तो उस गुणगान के प्रति ऋणी होकर भगवान जो चाहिए वो भेज देंगे आपको। इतना सुंदर इतना बड़ा मंदिर बनेगा कि इस कौन में इतना बड़ा नहीं होगा। ये शक्ति है भगवान के नाम में, लेकिन हम उसको आजमा नहीं रहे। इसलिए कृपा करके जितना हो सके कम से कम हफ्ते में एक दिन एकत्रता के जप कीजिए, उससे शक्ति बढ़ेगी, उससे हमें क्या होगी? आध्यात्मिक प्रगति होगी। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? ना तो मैं योगियों के हृदय में हूं, ना तो मेरे वैकुंठ धाम में हूं, जहां मेरे दो भक्त भी एकत्रित आके मेरा गुणगान करते। इसका मतलब कि सिर्फ दो दो आके हम शेड्यूल बनेंगे दो दो का? नहीं, ऐसा नहीं। जितना हो सके ज्यादा लोग आना चाहिए। भगवान ने कहा दो ही भक्त हो तो मैं प्रसन्न होता हूं। इसका मतलब नहीं कि महीने का शेड्यूल बनाए, ये हफ्ते दो लोग आएंगे, अगले हफ्ते दो, नहीं ऐसा नहीं। वो मिनिमम बोला है, जैसे प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 माला, उस प्रकार कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। और सुबह सचमुच दो व्यक्ति थे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतने एकत्रित होना चाहिए, और जितना तीव्रता से आप करेंगे उतना ये जो धरती है, ये जमीन अपने लिए है, वो पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद भगवान क्या होंगे? तैयार होंगे इसमें आने के लिए। नहीं तो कितना भी आप करेंगे ईंट, पत्थर, लोहा एकत्रित, उससे भगवान यहां पे नहीं आएंगे। इसलिए कृपा करके आप यही वचन दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे आकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कम से कम रविवार के दिन। ठीक है, सबको मान्य है? सब लोग वादा करते हैं? हाँ, तो मुझे पूछना पड़ेगा क्या हुआ तेरा वादा करके। हाँ, अगले वादा के मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि हम भगवान को भी धोखा देते आ रहे हैं, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मैं एक साधारण इंसान हूं, भगवान के सामने अपने वचन दिया है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग एकत्र आके क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही सार है, बाकी सब सांभर है। तो कृपा करके सोचिए कैसा करना है इसको, कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्णा। कौन सा था?
If you improve your chanting, all anxieties will get cleared up. Lord will be established only by sincerely approaching chanting. Last part, the Lord will be
accomplished. ठीक है, तो आज के प्रवचन पे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई समस्या है, शंका है, तो अगर भगवान ने चाहा तो अगली बार जब आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि जप की तैयारी कैसे करना है, पूर्व तैयारी, ध्यान पूर्वक जप की पूर्व तैयारी कैसे करना है। चैंटिंग बिगिंस बिफोर नाइट, बहुत ही सुंदर विषय है कि हर एक चीज तैयारी करते हैं, हम पिकनिक पे जाना है, यात्रा पे जाना है, किसी गांव जाना है, एग्जाम जाना है, हर एक की तैयारी करके हम जाते हैं, लेकिन जब जपा का समय आता है तो हम तैयार नहीं होते। तो उसके लिए क्या तैयारी करना है, उसके लिए क्या सोचना है, हम चर्चा करेंगे। अगर समय मिलेगा अगली बार तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई शंका, किसी का व्यक्तिगत प्रश्न हो तो आके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गए। तो दोपहर को जो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, वो सबके लिए है, विशेष करके जितना नए लोगों को बुलाएंगे उतना अच्छा होगा, कम से कम उनके भक्ति की शुरुआत होगी, क्योंकि उसमें भी हम हरि नाम का महत्व बता रहे हैं। कलयुग में भगवान का नाम ही क्यों, कैसे है आखिरी रास्ता है। एक दो मिनट बैठे, थोड़ी सूचना है, उसके बाद सब जा सकते हैं।